जिससे हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात
ओम शांति। आज इस महान तपस्वी भूमि के अंदर, तपस्या के वातावरण में, हमारे बीच में जिंदगी से हारे हुए को नया जीवन प्रदान करने वाले, दिल के मरीजों में नव चेतना प्रकट करने वाले ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी पधारे हैं। हम बहुत ही दिल से गुप्ता जी का स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। आपने ज्ञान 1986 में प्राप्त किया, 1995 से आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू की। ट्रोमा सेंटर के आप इंचार्ज हो। हेल्दी हार्ट एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन इंडिया के आप प्रेसिडेंट भी हो। नेशनल इंटरनेशनल कई अवार्ड, अनगिनत अवार्ड आपने प्राप्त किए हैं और उनमें से आपको प्रेसिडेंट के तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। आप बाबा के एक ऐसे विशेष रत्न हो जिन्होंने मेडिसिन और मेडिकल साइंस दोनों को मिला करके बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आपने लाया है। केट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपने हजारों हार्ट पेशेंटों को ओपन हार्ट सर्जरी से बचा लिया और बाबा के घर से एक नया जीवन प्रदान किया। तो आज हमारा विश्वविद्यालय केड के अंतर्गत सारे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो गया है। तो आज हमें डॉक्टर सतीश गुप्ता जी सूर्यवंशी की निशानियां और उनके लिए पुरुषार्थ तो कहेंगे डॉक्टर गुप्ता जी।
ओम शांति। अब सभी बहुत पावरफुल भट्टी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सभी को यहाँ के। तीन दिन हो गए ना आपको, अभी तीसरा दिन है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा कि लास्ट टॉपिक आपका ना यही होना चाहिए ना, सूर्यवंशी का ना। चलो मैं ऐसे पूछता हूँ वैसे आपसे, जो चंद्रवंशी बनना चाहते हैं हाथ उठाए। नहीं बनना चाहते, कोई भी नहीं बनना चाहता, सीट बहुत खाली है ना, मतलब वैकेंसी बहुत है। नहीं बनना था संत चंद्रवंशी राजा बनना, राम सीता नहीं बनना, नहीं बनना। जो सूर्यवंशी बनना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। आधा नहीं उच्च, पूरा हाथ में आधा माना प्रजा, नहीं आधा माना प्रजा, पूरा माना राजा रानी ना, बहुत अच्छा। तो सभी सूर्यवंशी बनना चाहते हैं ना, तो इससे पहले कहीं सूर्यवंशी के बारे बात करें, हम मैं चाहूंगा तीन प्रश्न आपसे ना पूछना चाहूंगा ना, तीन प्रश्न, क्योंकि तीन प्रश्न में सूर्यवंशी बनने का सारा राज समाया हुआ है ना। सूर्यवंशी की निशानियां भी डिस्कस करेंगे उसके बाद, मतलब अभी उसकी क्या निशानियां होंगी, सूर्यवंशी अभी निशानियां क्या होंगी इस समय, अभी पुरुषार्थ हमारा जो जीवन है वो बाबा के हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे हैं, अभी हमारे अंदर क्या नजर आएंगी निशानियां ना, हमारा कैसा अभी कि हम सूर्यवंशी बनेंगे चंद्रवंशी बनेंगे ना, साफ साफ दिखाई देगा ना, उससे हम अपने आप को डायग्नोज कर सकते हैं, मतलब डायग्नोज समझते हैं ना, मतलब पता लग सकता है हम सूर्यवंशी बनने वाले हैं कि चंद्रवंशी बनने वाले हैं, ये निशानियों से। और फिर अगर हम चंद्रवंशी लग रहा है अभी चंद्रवंशी बनने वाले हैं, अभी पुरुषार्थ चंद्रवंशी का है, तो हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो फाइनल है ना, हम उसे परिवर्तन करके वापस सूर्यवंशी बन सकते हैं। तो मैं पहले तीन प्रश्न पूछता हूं आपसे। पहली बात है, बाप की श्रीमत किन बच्चों को मिलती है बताओ? मातेले बच्चों को। और बाप की श्रीमत किन बच्चों को मिलती है? हैं जी, ब्राह्मण तो हम सभी हैं, पर हर कदम पे बाप की श्रीमत मिले, हर कदम पे बाप का साथ का अनुभव हो, है ना, जो सूर्यवंशी बनते हैं, जो बाबा को पूरा फॉलो करते हैं। नहीं, आपका सबका जवाब ठीक है, किंतु जो बाबा के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, बाबा के वर्ड्स हैं कि बाबा के महावाक्य हैं कि जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं, ये तन भी मेरा नहीं, ये मन भी मेरा नहीं, ये धन भी मेरा नहीं, इस तन को भी बाप की अमानत समझते हैं कि ये तन को मैं जैसे बाबा कहेगा वैसे ही यूज करूं, जिससे मैं बाबा उठने का टाइम कहा उसमें उठना, अमृत वेला करना, है ना, फिर जैसे बाबा की मुरली में समय पर जाना, सारा दिन खान पान भी उसी ढंग से रखना, है ना, सैर करना, बाबा की याद में ही करना, सोने के समय बाबा को सारा, मतलब जैसे हम दिनचर्या हमारी एकदम एक्यूरेट, तन को उसी तरह यूज करते हैं, अपना समझ के यूज नहीं करते हैं ना, मतलब आलस्य अलबेलेपन में उसको गंवाते नहीं है ना। मन भी जो संकल्प बाबा कहता है वो संकल्प करते हैं, मतलब जब जैसे मुरली के बाबा, संकल्प कहां से मिलते हैं हमको? मुरली से मिलते हैं ना, तो बाबा के जो मुरली सुनते हैं सारा दिन उसी को, मन को उसी में लगा देते हैं, साथ उसी का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते रहते हैं। बाबा की मुरली कोई बस धुन लग जाती है, बाबा बाबा बाबा, बस बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, आपस में बातचीत करते तो बाबा की बातें करते हैं, दुनियावी बातें नहीं करते हैं, बाबा की ही बातें करते हैं। और धन, सबसे बड़ा धन कौन सा है? समय, अपना समय जो है वो बाबा की याद में और सेवा में लगाते हैं, अपना समय सबसे बड़ा धन है। दूसरा धन कौन सा है? श्वास, अपना हर श्वास बाबा की याद में जाए वो ध्यान रखते हैं, ठीक है। तीसरा धन कौन सा है? हाँ, संकल्प, हाँ वो तो खैर संकल्प मन में आ गया वैसे तो। और फिर स्थूल धन भी है ना, मतलब स्थूल धन भी जो है हम बाबा की से डायरेक्शन लेके खर्च करते, अपनी मर्जी से नहीं, जहां मर्जी खर्च कर दिया, जिसको मर्जी दे दिया, ऐसा नहीं, बाबा से पूछ के हर बात की श्रीमत लेते हैं, हर बात की डायरेक्शन लेते हैं, बाबा अभी ये कार्य सामने आया है क्या करें, बाबा मुझे वहां जाना है, बाबा मुझे बच्चे पैसे मांगते हैं कहां से, इनको कितना दूं, क्या करूं, है ना, बच्चे या वहां शादी में जाना है, वहां यहां जाना है, वहां जाना है, जो भी कार्य है ना, बाबा विदेश जाना है, बाबा वहां जाना है ना, तो बाबा की डायरेक्शन लेकर के उस धन को भी बाबा की श्रीमत पे यूज करते हैं, अपना धन समझ के नहीं, बाबा की अमानत है ना, तो बाबा से पूछ के खर्च करते हैं ना। तो ऐसे बच्चों को बाप कदम कदम पे डायरेक्शन देता रहता है, श्रीमत देता रहता है, अंदर टच होती है श्रीमत, है ना, समझ में आती है, अंदर से टच होगी कि मुझे क्या करना है हर कदम पे, मतलब ये नहीं कि बस, मतलब घर के भी हर काम में, घर के जो भी काम आप करते हैं, घर में भी जिम्मेवारियां हैं आपकी, है ना, लौकिक में अलौकिक में, चैम सेंटर पे टीचर बहने हैं, टीचर हमारा सेंटर पे, हमें कार्य कर भिन्न भिन्न प्रकार कार्य करने होते हैं, उनके बारे में हमको समय समय पर डायरेक्शन मिलती रहती है, हर समय टच होता रहेगा बुद्धि में, है ना, मुरलियों के आधार से ही, मुरली बाबा ने चलाई होगी 2 महीने पहले, वो उस समय वो एकदम मुरली ध्यान में आएगी, अरे बाबा ने तो ये कहा ऐसे करना है, नहीं तो बाबा से अमृत वेले बैठेंगे याद आ जाएगा, बच्चे ऐसे कर लो, बच्चे ऐसे कर लो, बच्चे ऐसे कर लो, मतलब तुरंत जैसे ना, मतलब सूर्य से कांटा बनता रहेगा, आप समस्याएं जैसे आपके सामने होंगी नहीं, समय समय पर बाबा की श्रीमत मिलती रहेगी। तो ऐसे बच्चे, ये निशानी किसकी है? ये सूर्यवंशी बच्चों की निशानी, ठीक है, क्योंकि वो अपना तन मन धन अभी पूरा बाबा पर बलिहार कर देते हैं, जरा भी ना तन को अपना समझते हैं, ना ही मन को अपना समझते हैं, कोई भी संकल्प, कोई भी भावना, अपनी वृत्ति, अपनी स्मृति जो बाबा ने दी है उन्हीं को यूज करते हैं, मतलब अपनी मन, अपनी अपने संकल्प नहीं चलाते, परम मनमत परमत पे संकल्प नहीं चलाते, है ना, परमत पे संकल्प नहीं चलाते, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, किसी और की भावना, किसी और तरह से भावना, है ना, किसी के प्रति कैसे एटीट्यूड, वो भी नहीं। जैसे बाबा ने कहा, रूहानी रूहानी वृत्ति सबके पर, रूहानी दृष्टि रखते हैं। और स्मृतियां भी जो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम तो देवता बनने वाले हो, तुम तो ब्राह्मण हो, है ना, तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, है ना, तो वो बार बार उनको स्मृतियां आती रहती है, वही स्मृति से अपनी वृत्ति बनाते हैं, उसी से अपनी दृष्टि बनाते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये प्रश्न। दूसरा, बाप से करंट कौन बच्चे खींच सकते हैं? सच्चे हो तो बिल्कुल ठीक है। और जी, जिससे बाबा से प्यार होता है, ठीक बात है जी, जिनकी बुद्धि इनकी लाइन क्लियर नहीं, सारे बिल्कुल ठीक है। और कोई सोल कॉन्शियस होते हैं, बहुत अच्छा, जिससे अपने को खुशी मिलती है। बाबा से जो करंट खींच, क्वेश्चन है, जो बाबा से शक्ति खींच सकते हैं, करंट खींच सकते हैं, मतलब अपने विक्रम विनाश, जैसे आज की मुरली थी ना, यथार्थ याद से ही, अर्थ सहित याद से ही पापकर्म नष्ट होते हैं। अगर यथार्थ याद नहीं हो तो पापकर्म नष्ट नहीं होते हैं ना। तो बताइए, बाबा के महावाक्य में से बताइए। ठीक है, ये मुरली में आए हुए हैं, मैंने कोई अपने से नहीं बनाया है, जिनका कनेक्शन बाबा से ठीक होता है, बहुत अच्छा। यस, सुनीता बहन ने एकदम एक्यूरेट बताया ना, बाबा ने कहा है जो अशरीरी बन करके परम धाम में सदा अशरीरी सदा विदेही बाप को, बाप की याद में रहते हैं, है ना, किस में रहते हैं, अशरीरी बन करके। आत्मा की चार स्थिति है ना, आत्मा की पहली स्थिति देही मन स्थिति है ना, दूसरी स्थिति आत्म मन स्थिति है, तीसरी स्थिति अशरीरी स्थिति है। और जब हम अशरीरी बनके अशरीरी बाप को परम धाम घर में याद करते हैं, शांति धाम में याद करते हैं, तो हमारे विक्रम विनाश होते हैं। अगर हम अशरीरी खाली देही मन स्थिति में बाप को याद करते हैं तो उससे विक्रम विनाश नहीं होते, आत्म मन स्थिति में भी विक्रम विनाश नहीं होते, विक्रम होते नहीं है, किंतु अशरीरी बनके जब अशरीरी बाप को याद करते हैं तो विक्रम विनाश होते हैं, उससे आत्मा की स्थिति विधेयी बन जाती है, फिर देह में रहते विधेयी, कोई एकदम कोई कर्म का भान नहीं देता है, कोई कर्म का लेप छेप नहीं लगता है, फिर सारे विक्रम खसम भसम हो जाते हैं, राइट। तीसरा प्रश्न भी पूछो कि नहीं, हाँ जी, ये पके दो पके हुए श्रीमत वाला, किन बच्चों को मिलते है? दूसरा करंट किनको, और ये निशानी है सूर्यवंशी बच्चों की ना, कि सूर्यवंशी बच्चे अशरीरी होके, मतलब वो एक्चुअली अशरीरी का मतलब क्या है, देह अलग में आत्मा अलग, है ना, ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट है ना, आत्मा नशिक आत्मिक नशा जो है, आत्मा जब अलग है ना तो उसको अतिंद्रिय सुख की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है, अतिंद्रिय सुख आनंद मतलब नशे से और निश्चय से एकदम बाबा की याद में, बस मैं आत्मा अलग हूं, देह का जरा भी भान नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में नशे खुशी से और आनंद से बाबा को याद कर, बाबा की याद में लवलीन रहते ना, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अपने विक्रम विनाश में कर सकते हैं। ठीक है, और सूक्ष्म वतन में नहीं, कि सूक्ष्म वतन बाबा की गोद में ही बैठे हुए हैं, सूक्ष्म वतन बाबा, सूक्ष्म वतन में कभी विक्रम विनाश नहीं होते हैं ना, परम धाम में जब अपनी स्थिति में रहते हैं तो विक्रम विनाश होते हैं। तीसरा प्रश्न है, बाप की मदद और वर्षा कौन से बच्चे को मिलता है? माता के बच्चे को मिलता है, पर उसकी क्या विशेषता है? हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा, जो देह और देह की दुनिया से, देह की दुनिया का संन्यास, बेहद का संन्यास करके, और बेहद मतलब पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं और पवित्र रहते हैं, संपूर्ण पवित्र रहते हैं, उनको जो है फिर वो बाप से क्या होता है, वर्षा क्या है, संगमयुगी वर्षा क्या है, एक संगमयुगी वर्षा है, एक सत्ययुगी वर्षा है ना, सत्य की बादशाही, तो संगमयुगी वर्षा है, सात आत्मा के गुण है, है ना, तो जो उनको बच्चों को, जो बच्चे ऐसे रहते हैं ना, जो पवित्र बन जाते हैं ना, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में भी पवित्र रहते हैं, उनको क्या होता है, बाबा से वो करंट खींच सकते हैं और बाबा से जो है ना वो उनको सत्य की समझ आती जाती है। मुरली की जैसे आज की लाइन है, मुरली की आज की मुरली है, जैसे ना बाबा ने कहा एक एक लाइन समझ में आती जाएगी। सत्य बाबा की, बाबा सत्य है, आज बाबा ने कहा बाबा तो है ही ट्रूथ और सच बनाने वाला है हमको, सत्य बनाने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला है ना, और सच्चित आनंद स्वरूप है, हमको भी सच्चित आनंद स्वरूप बनाता है। तो बाबा की एक बात समझ में आती है, सत्य की समझ, बाबा समझ में आता है, आत्मा समझ में आती है, आत्मा परमात्मा के संबंध अनुभव होने लगता है और ड्रामा में ड्रामा की एक बात समझ में आने लगती है कि ड्रामा जो हुआ अच्छा हुआ, गलत कुछ भी नहीं हुआ है, कोई दोषी को नहीं है, मेरी बीमारी के लिए, मेरे दुखों के लिए, मेरी प्रॉब्लम्स के दोषी कोई नहीं है, मेरे अपने कर्म दोषी है। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता अपने कर्मों के लिए, अपनी स्थिति के लिए, वो मेरे कर्म जाने अनजाने इस जन्म में या पिछले जन्म में जो भी कर्म हुए, कोई मेरी इंसल्ट भी कर रहा है, कोई मुझे गाली भी दे रहा है, मुझे कोई बदनाम भी कर रहा है, मेरे पैसे ले लिए वापस नहीं कर रहा है ना, मकान काबू कर लिया, प्लॉट काबू कर लिया, वापस नहीं करते हैं, तो वो किसी ने दोष नहीं किया है, मेरे ही अपने कर्मों का फल है। मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ किया होगा, उसका नुकसान किया होगा, तो उसने, मैंने भी किसी जमीन कब्जा की होगी, जमीन मेरी जमीन कब्जा हो गई, उसको मैंने इंसल्ट किया पिछले जन्म में, इस अभी मेरी इंसल्ट हो रही है, मैंने गाली दी होगी तो मुझे वापस गाली मिल रही है, मैंने किसी की गिलानी की होगी मेरी भी गिलानी हो रही है, तो वो कर्मों का हिसाब किताब है, राइट। तो जो हुआ ये समझ में आता है ना, तो ये सत्य की समझ अंदर बैठती है। खाली एक तो ज्ञान मैंने सुन लिया, मुरली सुन ली, पर मुरली सुन के समझ में आया कि हाँ ये जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो हो रहा है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बाबा के साथ का अनुभव होता है, हर समय ऐसा फील होता है बाबा हर समय मेरे साथ है, और जो होने वाला है तो बहुत अच्छा होने वाला है, बढ़िया से बढ़िया होने वाला है, क्योंकि अब मेरे कर्म ठीक है, मैं बीज ठीक बो रहा हूं, बाबा की श्रीमत पे बीज बो रहे हैं, हम बो रहे हैं या बो रही हूं ना, बाबा की श्रीमत पे हम बीज बो रहे हैं, तो जैसा बीज वैसा फल, तो अच्छा ही होगा, बुरा तो होगा नहीं अभी, राइट। आज शाम को क्या होने वाला है, बहुत अच्छा, कल क्या होने वाला उससे भी अच्छा, परसों क्या होने वाला उससे भी अच्छा, नहीं। तो ये हमको समझ में, सत्य की समझ आ गई। पवित्रता दूसरा वर्षा क्या है इस समय का, पवित्रता है ना, पवित्रता आ जाती है। पवित्रता का मतलब क्या है, पवित्रता सत्य की समझता होगा ना, इसको मैं एबीसीडी कहता हूं, सत्य 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 की समझ, ज्ञान माने एबीसीडी, आत्मा में आत्मा हूं, हम सब आत्मा है, चाहे मेरी पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, कोई भी है, पड़ोसी है, दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है, सेंटर पर रहने वाली और बहने हैं, भाई हैं, है ना, जो भी जहां भी हम है, जिस भी कार्य क्षेत्र में है, वो सबके सब हम सब आत्मा है ना, और एक परमपिता परमात्मा सब शिव के संतान है, हम सभी, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे बीके है चाहे नॉन बीके है, हम सब एक बाप के संतान है ना, और हमारे सर्व संबंध उसके साथ है, और ड्रामा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला सबसे अच्छा, तो इस सत्य की समझ आ गई। अब पवित्रता, फिर पवित्र दूसरा वर्षा पवित्रता है। अब पवित्रता जो है, पवित्रता का वर्षा क्या है, पवित्रता का वर्षा मतलब यह है कि पवित्रता इस ज्ञान के आधार पर, जितना इस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सेवन करते जाते ना, तो हमारे अंदर पवित्रता, पवित्रता का अर्थ क्या है, अपने सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप हमारा क्या है, अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप, अपना अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप की स्मृति रहती है ना, अपने अनादि और आदि, आदि देवता स्वरूप है ना हमारा, पावन सतोपदान स्वरूप है, तो उसकी स्मृति में स्थित रहते हैं और दूसरों का भी अनादि आदि स्वरूप देखते हैं, ये पवित्रता है, दूसरों को भी हम उसी रूप में देखते हैं, हाँ ये भी आत्मा परमधाम में रहने वाली है ना, पवित्र पावन सतोपदान, और ये भी जब भी सतयुग में आई, जब भी आई है, भले सतयुग में नहीं आई है, सतयुग में आई तो है ही पावन सतोपदान, तो अभी भी जब ऊपर परमधाम से नीचे आई तो भी पावन सतो प्रधान है। कोई भी आत्मा जब परमधाम से पहली बार आती है तो वो कैसी होती है, पावन सतो प्रधान होती है ना। हाँ कई का एक ही जन्म होगा तो एक ही जन्म में सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो, किंतु आई कैसे थी, आई तो सतो प्रधान थी। तो हर आत्मा, चाहे वो कलयुग में आने वाली आत्मा, तो भी क्या है, उसका अनादि और आदि स्वरूप कैसा है, पावन सतो प्रधान। तो मैं अपने अनादि और आदि पावन सतोपदान स्थिति में स्थित होकर के, और फिर दूसरों का भी अनादि और आदि पावन से तो प्रधान स्वरूप देखो, को मुझे गाली भी दे रहा है, इंसल्ट भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कर रहे हैं, कर रही है, तो भी उसको उस स्वरूप में दिखे देखे और सत्य स्वरूप में व्यवहार करें। सत्य स्वरूप मन तो अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना। पवित्रता का मतलब क्या है? अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के दूसरों के सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना। सत्य स्वरूप क्या है हमारा? सत्य स्वरूप में सत्य माना सत्य स्वरूप का मतलब है ये आत्मा के सात गुण। सत्य की समझ से व्यवहार करो, किसी से भी पवित्रता से व्यवहार करो, शांति से व्यवहार करो, सबसे रूहानी प्रेम से व्यवहार करो, है ना, सबसे रूहानी प्रेम से व्यवहार करो, सबसे अतिंद्रिय सुख की अनुभूति करते हुए व्यवहार करो, सबसे आनंद की स्थिति में व्यवहार करो और सर्वशक्ति स्वरूप बनकर के व्यवहार करो, राइट। तो ये है पवित्रता। और पवित्रता मना किसी से लगाव ना हो, किसी भी देहधारी से, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, किसी से लगाव रखना भी है पवित्रता है। ये सूर्यवंशी आत्मा की निशानी होगी, वो किसी भी देहधारी से लगाव नहीं होगा उसका, किसी भी देहधारी, ना लौकिक में ना अलौकिक में, क्योंकि हमारा वायदा क्या है बाबा से, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा। पवित्रता का मतलब यह, संपूर्ण पवित्रता का मतलब यह है कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ये है कि नहीं? दूसरे से लगाव हो गया तो क्या होगा? जो जिससे लगाव हो वही याद आएगा, करने बैठेंगे बाबा को याद, और याद कौन आएगा, याद कौन आएगी, वही याद आएगा, तो बाधा होगी ना बीच में। पवित्र झुकाव किसकी तरफ ना हो, किसी का प्रभाव भी ना हो, कोई भी भाई बहन बड़े है ना, कोई भी यज्ञ में बड़े छोटे कोई भी, और बाहर भी दुनिया में कितने भी बड़े क्यों ना हो, किसी के इंप्रेशन में नहीं आना है। हमारा लगाव झुकाव प्रभाव सिर्फ एक बाबा से हो, बाबा के लगाव में रहना है, बाबा की तरफ झुकाव होना चाहिए और बाबा से एक ही प्रभाव में रहना है। किसी भी देहधारी के प्रभाव में आएंगे तो वो ही याद आएगा जब भी याद करने बैठेंगे, ठीक है। क्या बताए, वो दीदी बहुत अच्छा क्लास, वो भाई जी बहुत अच्छा क्लास कर, वो भाई ऐसे ऐसे, कभी नहीं, ना। सूर्यवंशी की निशानी क्या है? मुरली में पहले था, मीठे बच्चे था ना, बाबा ने कहा था सूर्यवंशी कौन बनते हैं? जो सिर्फ बाप से सुनते हैं और बाप का सुनावा धारण करके ही वही सुनाते हैं। दूसरों का सुनने वाले, दूसरों का कहा हुआ करने वाले, वो सूर्यवंशी में नहीं आएंगे, ठीक है। ठीक है, बात क्या ख्याल है? हमारा बाबा कौन है? सूर्य है ना, तो अगर हमें सूर्य के बजाय किसी और का सुनेंगे, जितने भी देहधारी वो क्या बन जाएंगे? मैक्सिमम चांद बन सकते हैं ना, उनकी अपनी लाइट तो नहीं है, बाबा से ली है लाइट, है ना, तो उसकी लाइट लेके फिर हम कभी सूर्य बन सकते हैं वापस? सूर्यवंशी बन सकते हैं क्या? किसी का भी, कोई कितना भी, अगर कोई विशेषता है, किसने बहुत अच्छी क्लास कराई, तो क्लास कराने वाला कौन? वो या बाबा? टच करने वाला कौन? बाबा, है ना? नहीं, क्या ख्याल है? नहीं नहीं नहीं, देखो सबसे बड़ी बात है, मैं बताता हूं, सबसे बड़ी जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की है, एक बाबा और बाबा की मुरली, यही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। आज की मुरली में भी था ये लाइन, सत्य बाबा है, एक सत्य बाबा है, बाकी बाबा की बात इस समय भले में समझ नहीं आती है क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी पावन नहीं हुई है ना, तो वो हमें समझ नहीं आती, किंतु भविष्य में आके वो सिद्ध होने वाली है, क्योंकि हम एक कालदर्शी थे, अभी धीरे धीरे कालदर्शी बन रहे हैं, बने नहीं है, है ना? तो बाबा जानता है ना? बाबा, मैं तो सिर्फ अपने इस जन्म को पूरा नहीं जानता हूं, बाबा मेरे आदि मध्यंत को जानता है, सत्य को जानता है, त्रेता को जानता है, द्वापर में क्या था, कलयुग में क्या है, अभी क्या बनने वाला है, क्या क्या, बाबा एक एक बात को जानता है। तो जो बाबा की मुरली है वो सत्य है। और अगर आपके 10 लीटर दूध हो, उसमें एक चम्मच जहर मिला दो तो क्या हो गया? वो तो बाबा की मुरली है, सत्य है, अमृत है ना, दूध है, ज्ञान दूध है, उसमें आपने एक किसी की मनमत परमत मिला दी, क्या हो जाएगा? कोई कहता है ऐसे करके बैठो आप, है ना, ऐसे लगा के बैठो, ये बाबा की श्रीमत है क्या? आपने वैसे बैठ गए करके योग करने, है ना? तो अभी क्या हुआ? ये मनमत है परमत, ये श्रीमत है, आपने मिक्स कर दिया तो क्या होगा? ऐसे किया तो योग लग गया, थोड़ी देर लग गया, टेंशन आ गई, है ना? भले उंगली में भी दर्द हो रहा, कोई बात नहीं, होता रहे, है ना? योग लग गया। फिर जब खाना बनाओगे तो क्या होगा? अब ऐसे करोगे क्या? ऐसे ऐसे करके रोटी बनेगी क्या? है गाड़ी चलाओगे ऐसे करके? तो इस समय योग नहीं लगेगा ना, फिर आपको आदत पड़ेगी ना ऐसे करने की? नहीं, आपको ऐसे करके हाथ करने की आदत, योग करने की आदत पड़ेगी। ऐसे करके जैसे मर्जी चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, इतना सहज है ना ये। तो मनन के अंदर का, अंदर का बाबा की एक मुरली का मनन चिन्ह। योग क्या है? योग बाबा की मुरली है ना, जो जैसे आज की मुरली थी, उसका एक एक महावाक्य का स्वरूप बनना, एक एक महावाक्य का मनन चिंतन मंथन सिमरण करना, उसका स्वरूप बन जाना, उसको अनुभव कर लेने के क्लाइंट को, वही योग है। कितना वैरायटी योग हो गया सोचो जरा। आज सुबह की मुरली शाम तक मेरे स्वरूप में आ जाए, वो क्या चाहिए? नहीं, यही तो योग है। और योग क्या है? नहीं नहीं बस मैं तो ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे किरणें आ रही हैं, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वो योग थोड़ी ना कोई। तो ये बाबा के बच्चे जो सूर्यवंशी बनने वाले बच्चे होंगे ना, उनकी लगन ऐसी होगी बाबा के साथ। बस एक बाबा और बाबा की मुरली, बाबा और बाबा की मुरली। शायद मेरे को कभी आपने सुना भी हो, एक बार बड़ी दादी के पास जैसे हम जाते थे, दादी प्रकाशवाणी के पास रोज जाना होता था, दादी ने कहा हुआ था मेरे पास रोज जाना। दादी ने एक दिन ऐसे पूछ लिया मुझसे कि दादी जी, दादाजी आप मुझे बताओ कि ये जो अष्टरत्न कौन बनेंगे? अष्टरत्न सूर्यवंशी होते हैं, चंद्रवंशी होते हैं, सूर्यवंशी होते हैं ना, तो कौन बनेंगे? मैंने कहा दादी आप बनेंगे, बाबा बाबा मम्मा बनेंगे, आप बनेंगे और दादियां बनेंगी। मैंने कहा दादी उसका बनता कौन बन सकता है, उसकी विशेषता क्या होगी? मुझे, मैंने कहा दादी मुझे तो नहीं पता, नहीं आप मुरली हैं बहुत पढ़ते हैं ना, आप तो सारा दिन मनन चिंतन करते रहते हैं। तो मैंने कहा फिर भी दादी मुझे पता नहीं इतना जितना आप मुझे बताइए। दादी ने कहा जो बाबा और बाबा की मुरली, बाबा की महावाक्य, जो श्वासों श्वास बाबा और बाबा की मुरली की याद में रहते हैं, मुरली उनको याद आती रहती है, वो अष्टरत्न बनते हैं। एक दिन में कितने श्वास लेते हैं? 16,000 सांस लेते हैं लगभग, आप गिन के देखना। एक मिनट में 14 लेते हैं दिन में, और रात में 10 से 12 लेते हैं। आप टोटल काउंट करेंगे ना, 16,000 के आसपास आएंगे, है ना? श्वासो श्वास देखो आप, दादी जानकी को देखो आप, दादी प्रकाशमणि को देखते थे, है ना, दीदी को देखते थे, है ना, क्या स्थिति थी उनकी? श्वासो श्वास बाबा 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 बस, और बाबा की मुरली। मुंह से नहीं बोले, मुंह से बोलने की बात नहीं है, बस बाबा और बाबा की मुरली, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा, अंदर मुरली बसती रहती है, अंदर ही मुरली बसती रहती है। जो मुरली का मनन चिंतन करते हैं उनको, जैसे इस समय जो मुरली का मनन चिंतन करते हैं वो क्या होता है? मनन चिंतन मंथन सेमरण करते हैं, वो क्या होते हैं सत्युंग जी? क्या होता है उनको? अभी ये मुरली सदा दिल में रहती है ना, जेब में रहती है ना, मन बुद्धि में ही घूमती रहती है हमेशा, और कुछ नहीं घूमता है, दुनियादारी की बातें घूमती नहीं है। तो ऐसे देखो ना, फिर कृष्ण को क्या मिला सत्युग में? कौन सी मुरली मिली? रतन जड़ित मुरली मिली ना। ये मुरली जो अंदर चलाता रहेगा उसको क्या होगा? सत्युग में कैसी मुरली मिलेगी? रतन जड़ित मुरली मिलेगी ना, उसको हथियार नहीं उठाता कोई, आराम से बस मुरली बजाता रहता है ना। तो ये मतलब मुरली का जैसे ये निशानी होगी सत्य सत्य में। और जो सो में कौन आएंगे? आठ में तो आ गए, सो भी तो सूर्यवंशी होते हैं ना, उनकी निशानी क्या? जो दिन में, वैसे योगी की नींद होती है, दुनिया वालों की नींद होती है 8 घंटा, और योगी की नींद आधी होती है 4 घंटा, है ना, 10 से 2 बजे तक, है ना, 10 बजे सोए 2 बजे उठ गए, है ना। तो बाकी फिर 20 घंटा उनमें क्या होगा? मतलब हर एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? एक घड़ी, वो तो घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, घड़ी में एक पापा कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनाद, है ना। तो इसका कितना कितना एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? कभी सोचा नहीं आपने कि घड़ी में, बाबा घड़ी कहते हैं, देखते ना घड़ी क्या होती है? हाँ, घड़ी में 24 मिनट होते हैं, एक दिन में 60 घड़ी होती है ना, तो एक घड़ी में 24 मिनट, आधी में 12 मिनट और आधे की पुनाद में 6 मिनट ना। तो बाबा ने कहा कि जो बनते हैं ना अष्टरतन जो बनते हैं ना, सॉरी जो 108 की माला में जो आते हैं, वो जो है वो उसको कम से कम दिन में हर आधी घड़ी में एक बार बाबा और बाबा की मुरली याद है, मतलब हर 12 मिनट में बाबा और बाबा की मुरली याद है। तो 20×5 कितना हो गया, 100 हो गया ना, नहीं? तो एक घंटे में कितनी बार, 5 बार है ना, एक घंटे में 5 बार बाबा याद आता है बाबा की। एक बार बाबा ने एक मुरली चलाई थी, याद होगा शायद आपको ना, एक घंटे में 5 बार बाबा को याद करो ना, है ना? यार बहनों को याद होगा ना, अव्यक्त मुरली थी, अभी पीछे शायद 2000 कुछ की थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, नहीं है 2003-04 की मुरली थी ना, 8 की थी, हाँ। आपको 500 रूपये वाली अलग थी, 500 रूपये वाली अलग थी, एक बार बाबा ने 5 मिनट की बात की थी, हाँ 5 बार, हाँ 5 बार कहा था। तो मतलब कम से कम 5 बार बाबा याद आना चाहिए, और बाबा की मुरली कोई ना कोई महावाक्य याद आना चाहिए, इतना अटेंशन, मतलब इतनी अटेंशन देनी चाहिए बाबा पे ना। और फिर क्या होना चाहिए, फिर कौन आ गया 16,000। एक दिन में 8 पैर होते हैं, कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं ना, हम 2 पैर कहते हैं, 2 पैर माना सुबह 6 बजे सुबह होती है ना, एक पैर 9 बजे पूरा होगा, दूसरा पैर 12 बजे, तो 12 बजे क्या हो गई, 2 पैर हो गया ना, नहीं फिर एक एक दो एक पैर और 3 बज गया, फिर एक पैर हो गया तो 6 बज गया ना, शाम हो गई ना, है ना। तो ऐसे होते ना पैर, 3-3 घंटे का पैर होता है ना, तो एक घंटे में 8 पैर होते हैं ना, तो हम मान लो 2 पैर तो सो गए, मान लो 6 घंटा ही सो गए, मान लो कितने पैर बचे, 6 पैर बचे ना, अब मतलब 16 घंटे बचे ना, 16-18 घंटे बचे, अब उसकी बजाय आप क्या करो, 3-3 घंटे में 2-2 घंटे में बाबा को याद करो। 16,000 की माला में सिर्फ 16,000 ही राजा रानी बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं त्रिता के अंत तक, ना चंद्रवंशी भी आ गए उसमें तो, पर ठीक है, तो चंद्रवंशी तो हमको बनना नहीं है ना, 108 की माला ही मतलब सूर्यवंशी की निशानी है, ठीक है, 108 जो है ना मतलब सत्युग के अंत तक 108 ही राजा रानी बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं 8 बार। बाबा और बाबा की मुरली मुश्किल काम है ना, बहुत एक्चुअली 16,000 कोई ऐसे नहीं, 16,000 कोई 16,000 में आते हैं, ये 16,000 सत्युग से शुरू से आते हैं, 16,000 भी शुरू से आते हैं ना। एक बाबा ने क्लियर किया था एक बार मुरली में कि 16,000 ही नहीं, 16,000 कोई बाकी जो फैमिली वाले त्रेता में आएंगे ऐसा नहीं है, सत्युग से शुरू में आना शुरू करते हैं ये 16,108 भी, जो प्रिंसिपल्स बने त्रेता में प्रिंसिपल्स बनेंगे किंतु वो भी 16,000 सत्युग में आते हैं, उस समय प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं किंतु बाद में जाके वो प्रिंस प्रिंसेस और राजा रानी बनते हैं, ठीक है, रॉयल फैमिली में आते हैं, सत्युग के शुरू से आते हैं। तो 16,000 में आने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 8 बार, क्या बता कितनी बार, बाबा की मुरली को लगभग 8 बार मेरी वाइज 2-2 घंटे मेरी वाइज करना चाहिए, सारी मुरली नहीं करो, कम से कम 2-2 लाइन मीठे बच्चे प्रश्न उत्तर गीत है ना, जैसे आज था भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, कल कौन सा था हा? कल का था जिस दिन से मिले हम तुम, नया दिन लागे रे नई प्रीत लागे रे नया, है ना, तो वो गीत रहते से बाबा के अंदर बजते रहना चाहिए ना, बाबा ने जिस दिन से मिले हम तुम नया दिन लागे रे है ना, नई नई प्रीत लागे रे नया नया लागे हर चीज है ना, सर्ग नया नई नई लागे पूनम है ना, नई नई लागे सरगम, मतलब ऐसे बाबा से जिस दिन मिले, जिस दिन से बाबा मिला हमें क्या लग रहा है, सारा दिन ही बदल गया, प्रीति बदल गया, जीवन ही बदल गया, अंदर से गीत ही गाते रहो चलो और कुछ नहीं, तो नहीं अंदर अंदर महसूस करते रहो अनुभव के साथ, नहीं ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। तो 2-2 घंटे में याद रहे 16,000 राजा रानी जिनको बनना ना, जिनको प्रजा बनना हुआ था, सत्युग में प्रजा बनना चाहते हैं तो राजा रानी सभी को बनना, 16,000 में सबको आना है। देखो हमारी टीचर बहनों को देखो 16,000 में आ जाते हैं क्योंकि दिन में 8 बार मुरली सुनाई देते हैं ना, एक बार सुबह पढ़ लेते हैं फिर सुना देंगे, फिर दिन में 3-4 बार तीन चार बार कोर्स करने आएंगे, लोग उनको भी सुना देंगे बार बार, कितने कितने भाई बहनों को सुनानी पड़ती, उनके आठ तो ही जाते हैं, इसलिए 16,000 में पक्का सीट उनकी हो गई। नहीं, आठ बार सुनते सुनाते ही ना, बहने तो आठ बार तो ही जाती है ना, दो दो घंटे में तो सुनाना ही पड़ता है, कोई ना कोई आ ही जाता है, नहीं होता है। बाकी जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनके लिए बहुत अटेंशन रखने की बात है, ठीक है। वो भी आते हैं ना, क्यों नहीं आते? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ऐसे कहा क्या? अगर अगर समर्पित भी हैं और नहीं करते तो वो थोड़ी ना आते हैं, वो दास दासी बन जाते हैं, है ना। वो बताया ना आगे, जैसे उनके रॉयल फैमिली दास दासी भी तो बहुत सारे होते हैं ना, एक के लिए चार चार दास दासी तो होंगे ना कम से कम, है ना। तो मतलब सीट तो बहुत खाली है, इसलिए दास दासी की सीट सारी खाली पड़ी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैकेंसी वैकेंसी है ना, चपरासियों की बहुत वैकेंसी है ना, तो प्रॉब्लम ही नहीं ना। सत्युग में सूर्यवंशी में चपरासियों की सीट खाली बहुत है ना, दास दासियों की सीटें बहुत है ना। और फिर प्रजा में कौन आते हैं? 9 लाख में कौन आते हैं? ये भी दादी ने उसने क्लियर किया। फिर दादी ने मुझे इशारा भी दिया, क्या वो मुरली पढ़ना है ना। तो मैंने कहा दादी ने कहा जो कम से कम रोज क्लास में, अमृत वेले क्लास में ना, जो मुरली क्लास होती है 7 से 8 है, 6:30 से 7 7:30 मुरली होती है, उसमें रोज आते हैं, सारा काम छोड़ के भी आते हैं। 9 लाख भी फर्स्ट क्लास प्रजा होती है सत्यु की ना। मोबाइल पे सुनने वाले, टीवी में सुनने वाले, वो सत्यु की पहली प्रजा में नहीं आते, मतलब कृष्ण के दर्शन नहीं करते वो, ठीक है। क्या ख्याल है? ये तो बहुत खराब बात कह दी ना मैंने, नहीं। और बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो मुरली में एक मतलब सुबह बाबा के जो महावाक्य सुनने आते हैं उसमें एक घंटा लेट आते हैं ना, उनको एक जन्म लेट हो जाते हैं, मतलब कृष्ण का राज खत्म हो जाता है, अभी दूसरा कृष्ण आ जाता है, दूसरा मना दूसरा लक्ष्मी नारायण, जो जो नंबर वन जो राजा है ना, मतलब नंबर विश्व महाराजन, वो नहीं बनते, उसके साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या ख्याल है? मंजूर है ना? 8 बजे ठीक है जाएंगे, थोड़ा सा बच्चों को स्कूल भेज के सब करके 8 बजे जाएंगे, फिर जाके बहन जी मुरली सुना देगी, सिर्फ एक ही जन्म लेट होगा, ज्यादा नहीं लेट होगा, ठीक है। जो 2 घंटा नाश्ता करके आते हैं घर में, बच्चों को भेज के नाश्ता करके आते हैं, 9 बजे फिर आते हैं, वो 2 जन्म लेट हो जाते हैं। जितने घंटे यहां लेट उतने घंटे उतने जन्म लेट, ठीक है। हां जी, कहां पर? वो सत्य वो समय से पहले ही पहुंच जाएंगे, कृष्ण के साथ साथ ही आ जाएंगे, सत्य में शादी होने से पहले, मतलब श्री कृष्ण का स्वयंवर होगा ना, राधा का स्वयंवर, वो स्वयंवर में पार्टिसिपेट करेंगे ना, सत्य में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने प्रायोरिटी किसको दी? प्रायोरिटी ये बात मुझे समझ में आई थी जब मैं ज्ञान में आया, मैंने पहली पहली शायद 86 में जब बाबा से हम लोग मिलने आए ना, तो बाबा ने पहले डॉक्टर से मिले थे, एक बार डॉक्टर से मिले थे बाबा ने, उसमें क्या था, योग का प्रयोग करने की बात की थी, है ना, सब बीमारियों को योग से ठीक करने की बात कही थी, पहली पहली मीटिंग में ही हुआ था हमारे साथ, तो तब से हाँ डॉक्टर होंगे राजा बनेंगे। तो बाबा ने पहली पहली मीटिंग में मुझसे ऐसे, मुझे बाबा ने जैसे ना हम लोग, मैं आगे आगे बैठा था जब आ गई ना ओम शांति भवन में, तब बाबा ने ये बात की, तो तभी से मेरे को लगन लगी योग का प्रयोग करने की। तो मतलब उसमें बाबा ने जो है ये बात कही थी जैसे ना, तो मतलब जो मुरली जो है ना, मतलब उसमें मतलब ये जो मुरली का जो है इतना इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि मुरली का मतलब सब काम छोड़ के, तब मैं उसमें एमडी कर रहा था, पहले एम्स में एमडी कर रहा था, तो मैं हम क्यों क्या करते, फिर मैंने बाद में लेडी हार्डिंग में आ गया था मैं ना, तो हमारे पहाड़गंज सेंटर था हमसे दूर थोड़ा सा, मतलब 2 किलोमीटर लगभग दूर था, तो हम लोग सुबह सुबह, हमारा छोटा बच्चा था तभी ना, 3 साल का बच्चा था, तो मैं और मेरी युगल हम लोग तभी क्या करते थे, सुबह सुबह 4 बजे मतलब 3:30 उठे, अमृत वेला किया और दोनों मिलके फिर हम खाना बनाते थे, मतलब मैं तो ऐसे ज्यादा एक्ट नहीं करता था, वही काम ज्यादा करते थे, मैं नहा धो लेते थे, फिर भी होता ना थोड़ा, चलो मैं कर देता हूँ, करना वरना कुछ नहीं था, बाकी ऐसे ही बोल देता था मैं कर देता हूँ ना, कभी सब्जी काट देते, एक दो फली काट दे, कुछ काट दे। तो तो करता था, थोड़ा सा कर देता था, तो घर के वो खाना बना लेते थे और खाना बना के और उसको बच्चे को स्कूल 7:45 उसको स्कूल छोड़ना होता था, 7:45 उसको स्कूल छोड़ते थे, स्कूल छोड़ के और फिर हम मुरली सुनने जाते थे। मुरली सुन के हम 7 से 8 मुरली सुनी और मुरली सुनते ही पूरी होते तुरंत उठ के अपने घर आ जाते थे। 8:15 तक पहले घर आ जाते थे, चपाती या तो बनी होती थी, 2-2 चपाती सेक के खा के 8:30 मेरे को हॉस्पिटल पहुंचना होता था, 8:30 अस्पताल पहुंच जाता था। तो मतलब हमने कभी भी लगन, हमारी लगन ऐसी थी कि जब समझ आ गई ना बाबा ने, ये बाबा की बात मुरली में, तब से फिर हमने मुरली छोड़ी नहीं। कुछ भी हुआ, धरती इधर से उधर हो गई, अमृत वेला कभी नहीं छोड़ा, मुरली कभी नहीं छोड़ी, कुछ भी हो जाए। इवन जब MD का मेरा एग्जाम था, थ्योरी एग्जाम था उसमें भी, प्रैक्टिकल एग्जाम था उसमें भी, लोग तो डरते हैं एग्जाम वाले दिन, रटते रहते हैं, मैंने रटा ही नहीं, मैंने कुछ भी पढ़ा ही नहीं, मैं मुरली सुनने गया। और मुरली सुन के जैसे ही आया नाश्ता करके, आधा घंटा दूर मेरा सेंटर था, एग्जाम सेंटर जहां पे था वहां गया, 9 बजे एग्जाम था, तो मुरली सुन के आया, जैसे रोज जाता था वैसे किया। और बाबा मेरे साथ था, मतलब मुरली जो एग्जाम होता है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है कि हमें केसेस दिए जाते हैं, केसेस देते हैं, तो केस दिए हुए थे, तो 4 केसेस देते हैं, तो केसेस होता है, फिर वाइवा होता है, सब कुछ होता है। तो जैसे बाबा मेरे साथ था, वो टीचर जो पूछता था ना, मेरे को मेरे दिमाग बुद्धि में पहले ही आ जाता था, बाबा जैसे ऐसे टच कर रहा था। तो इतनी मुझे मतलब जैसे ना वो एक मेरी जो उस समय की ना नर्स थी, जब मैं हाउस जॉब कर रहा था ना, जब वहां पे उसमें मौलानाजाद मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्पिटल था LNJP लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में, तो नर्स पहले उसको दमा बहुत था, अस्थमा बहुत था। तो मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था, हाउस जॉब कर रहा था, तो मैं उसकी बहुत मदद, कई बार उसको सांस फूल जाता था उस नर्स को ना, बहुत पतली दुबली सी नर्स थी, मैं कहता दीदी आप बैठ जाओ, है ना, वो बहुत ही मतलब प्यारी सी छोटी सी थी, तो आप बैठ जाओ बहन जी, आप बैठ जाओ, मैं कर देता हूं काम। तो मैं उसकी मदद कर देता था, मेरा कभी एक्स्ट्रा टाइम होता तो उसकी मदद कर देता था, उसके नर्सिंग के काम में था तो मैं डॉक्टर, किंतु मैं उसकी मदद करता था। उस समय वो उस वार्ड की इंचार्ज थी जिस वार्ड में हमारा एग्जाम था। अब उसने मेरे को क्या किया, बाकी तो स्टूडेंट और भी आए थे, कि तुम मेरे को VIP ट्रीटमेंट दिया है ना, तो ना, मेरे दूध में चाय नहीं पीता था, दूध बना के है ना, दूध दूध पिए, अच्छा क्या चीज चाहिए, कैसे चाहिए, कुछ भी, मतलब जैसे मेरे को VIP ट्रीटमेंट उसने दिया। कभी का अच्छा किया वो कर्म कभी भी साथ आता है ना, फल काट के ला दिया, आप फल, आप जब फल खा लो, आप ऐसे कर लो, अच्छा फल मंगाया बाजार से, मैं फल लेके नहीं गया था, है ना, उसने फल मंगाया, मतलब ऐसे, मतलब मुझे इतना उस पुण्य का फल, जैसे कहते हैं कभी का पुण्य किया वो कब साथ देता है ना। तो मतलब ये जो हमारे जो जैसे वहां पर क्या हुआ, जैसे बाबा मेरे साथ था, तो बाबा ने जैसे सभी एग्जाम जो 18-18 घंटे पढ़ने वाले लड़के थे ना, और मैं अकेला था सारे स्टूडेंट्स में, हम 24 स्टूडेंट थे टोटल, सभी हॉस्पिटल्स के जो थे ना, MD कर रहे थे, MD मेडिसिन, तो बाकी सबके सब अनमैरिड थे, मैं सिर्फ मैरिड था, मेरा बेटा भी था, तो वो बाकी सबके सब ऐसे थे और मैं जो है ऐसा था। तो और वो 18-18 घंटे पढ़ते थे, हॉस्पिटल भी नहीं आते थे, दिन रात पढ़ते थे, सारी रात भी पढ़ते थे, और मैं सिर्फ 2 घंटा रोज पढ़ता था अमृत वेला योग करके, और मैं 2 घंटा पढ़ता था, और पढ़ के और मैं फिर मैं ज्यादा नहीं पढ़ता था, मैं पेशेंट ज्यादा देखता था, पेशेंट देखने का अनुभव ज्यादा करता था, है नहीं, मुरली जाता था हमेशा, मुरली मतलब मैं बता रहा हूं, मैं 2 घंटा 1.5 घंटा समझो ऐसे ही पढ़ता, जितना टाइम मिलता था, आधा घंटा बाबा को याद किया, बस तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ के वो नहा धो के जल्दी से नहाया धोए भागे, मुरली में भाग गए ना, मुरली गए, मुरली सुन के आए। तो मेरा ऐसी था बस, पढ़ने का बाकी टाइम नहीं होता था, तो मैंने अपना उतना पढ़ के, और बाबा ने उसमें सारी बुद्धि में की चीज डालता जा रहा, और एग्जामिनर को मैं सारे आंसर देता जा रहा। वो बाबा एग्जामिनर पूछता, मैं उसका पूरा क्वेश्चन पूछने से पहले पूरा कर रहा था। तो एग्जामिनर इतना हुआ कि कहते हैं सब लड़के हमारी पकड़ में आ गए, 24 में से 23 लड़कों का ऐसा विश्वास नहीं था कि हम पास हो जाएंगे एग्जाम। कोई MD का एग्जाम ऐसा होता है जिसमें कोई भी लड़के को विश्वास नहीं हो सकता कि हम पास हो सकते हैं। एग्जामिनर इतना, 4 एग्जामिनर होते हैं, इतना खींचते हैं लड़के को, लड़का है जो भी स्टूडेंट होते हैं एग्जाम गोइंग होते हैं, उनको खींचते बहुत जोर से उसको, मतलब ऐसा लगाते तुम्हें पास ही नहीं हो सकते तुम, MD मेडिसिन का एग्जाम बहुत मुश्किल होता है। तो वो ऐसा करते, तो मेरे को ऐसा कर ही नहीं पाए, बहुत कोशिश की उन्होंने कि मैं कर नहीं पाए। और फिर जब वाइवा पे गया तो 4 एग्जामिनर कहते हैं ये लड़का हमारी बस में नहीं आया है ना, इसको अभी खींचे खींचो खूब सर। चारों ने मेरे सामने ही बोला, मेरे सामने ही बोल रहे हैं, फिर मेरे से क्वेश्चन भी उल्टे सीधे पूछे सब कुछ, मैंने ठीक वो भी आंसर हो गए। तो मैंने एमडी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है ना पूरी यूनिवर्सिटी में, तो ये सूर्यवंशी की निशानी है, ठीक है है ना, सुना आपने। तो अमृत वेला मुरली है ना, और अटेंशन, कितना भी बिजी हो सोने के पहले चेकिंग करना, ऐसे भी गलतियां नहीं होती, गलतियां तो नेचुरल है हमसे, कोई भी गलतियां विकर्म हो जाना पापकर्म हो नेचुरल है, क्योंकि हमने कलप कलप के अभ्यास ही है ना, हम लोग कलप कलप हमने अभ्यास किया हुआ ना पापकर्म करने का ना, देह भान में आने का है ना। तो वो थोड़ा अटेंशन चूका दुर्घटना हुई, सड़क पर लिखा होता ना सावधानी हटी दुर्घटना हुई, तो जैसे सोल कॉन्शियस थोड़ा सा हटा एकदम ईगो आ जाती, कुछ ना कुछ विकार आ जाएगा। अगर बाबा याद है मुरली याद है तो नहीं होता है, ये अपना कवच है याद, बाबा और बाबा की मुरली, जैसे ही हटा दुर्घटना हो जाती है, मतलब कोई ना कोई विकर्म हो जाता है। तो फिर चेक करना, कि सोने सोने के पर चेक करना, चेक कर लेना आज मेरे से कौन कौन से पाप हुए, आज कौन कौन से पाप हुए, लिख लेना। जैसे बता परसों की मुरली में था ना, अब बाबा को बताओ तो आधा, कल की मुरली में था आधा माफ हो जाता है, सच सच बताओ, सच सच लिख के बताओ तो माफ हो जाता है। तो बाबा से पूछ, बाबा आज ये गलती हो गई, बाबा आज ये गलती, बाबा मेरे से आज ये गलती हो गई, मैं ये भूल गया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने उसको ऐसा बोल दिया, ऐसा देख लिया, है ना, मतलब मेरी पीछे भावना, हम शरीर को तो हम देखना पड़ता है, एज ए डॉक्टर हमको देखना पड़ता है, पर मेरी भावना कैसी थी उसके प्रति, है ना। हम डॉक्टरों का काम तो टेढ़ा ही होता है ना, हमें सब कुछ करना पड़ता है, किंतु फिर भी हमें हमारी भावना कैसी थी उसमें, तो वो जो है तब हमें उसका टेंशन। तो ये तीन बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा अमृत वेला मुरली, फिर सारा दिन अटेंशन रखना बाबा ने क्या कहा, उसका सारा दिन मनन चिंतन मंथन करना, और सोने के पहले वेंटिलेशन करना। ये निशानी चार नियम है ब्राह्मण जीवन के ना, ये सूर्यवंशी की निशानी है, सूर्यवंशी इन चार नियम पक्का रहता है, कभी आगे पीछे नहीं करता, कभी अमृत वेला मिस नहीं करता, कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो 104 बुखार हो तो भी सूर्य तो भी अमृत वेला मिस नहीं करेगा, प्लेन में हो ट्रेन में हो कहीं भी हो, घर में कोई मर गया हो, घर में शादी हो, कुछ भी हुआ हो, वो अमृत वेला, घर वाले पूरे पूरे कुछ भी हो, कुछ भी एक भी ज्ञान में ना चलता हो, आपको उठने भी ना देते हो, मुरली में ना भी जाने देते, किंतु वो उसके लगन इतनी अच्छी होती है, इतनी प्यारी होती है कि वो अमृत वेला करेगा ही करेगा, चोरी छुपे जाके बाथरूम में भी करेगा, अब बाथरूम जाने से कोई रोक नहीं सकता है, तो बाथरूम में जाके, ठीक है नहीं, मैंने सब किया हुआ इसलिए बता रहा हूं ठीक है ना, मेरे को अमृत वेला उठने देते थे, कहते सो जाओ फिर मैं कहता अच्छा ठीक है बाथरूम, चुपचाप उठूंगा बाथरूम जाऊंगा, फिर बाथरूम में इतनी देर के लोग आ गए, मैंने कहा ठीक है मेरी मर्जी, उस पर भी तुम बैन लगाओगे क्या ऐसे मुरली पे बैन लगा दिया, मेरी मुरली पे बैन लगाया एक बार ना, घर वालों ने बैन लगा दिया, तो मैंने कहा मैंने फिर उसकी तरीक युक्ति निकाली, हमारे वहां रोहिणी में स्पोर्ट्स क्लब था एक ना, तो मैंने कहा स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लेता हूँ, स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया, तो स्पोर्ट्स क्लब में हमें 6 बजे जाना होता था ना, तो हम मतलब ऐसे जाते थे ना पहन के, शॉर्ट होती है और वो होता ना, और ऊपर से पजामा कमीज पहन लेते थे या कुछ पैंट शर्ट पहन लेते थे, तो थोड़ा सा वहां खेले आधा घंटा खेले, मैंने कहा 1.5 घंटा लगता है वहां पे, हम जाते ना स्पोर्ट्स क्लब में, तो हम वहां पे ऐसे आधा घंटा खेले, 1 घंटा मुरली सुन के आ गए घर पे, हो गया हमारी मुरली, किसको क्या पता हम मुरली सुन के आए, है ना, ठीक है हम तो स्पोर्ट्स क्लब से आए, और स्पोर्ट्स क्लब वाले से पूछ लो, देखो वो भी कहेंगे हाँ आए थे, है ना, ठीक बात होगी ना, मतलब हमें धरती इधर से उधर हो जाए, हमें मिस नहीं करना है ना, मुरली से प्यार होता है ना, क्लास में जाके मुरली, घर में बैठ के पढ़ लो, घर में बैठ के पढ़ लो ना, आपको तो दीदी दे देती ना मुरली, घर में पढ़ लो ना, घर में देती, घर में थोड़ी ना, घर में इसमें शक्ति थोड़ी मिलती है, घर में बैठ के अगर मेरे को खाना नाश्ता करना है, अब मोबाइल पे नाश्ता लिखो, ब्रेकफास्ट प्लेट, वन प्लेट वन थाली ब्रेकफास्ट, तो थाली आ जाएगी, तो नाश्ता कर लो ना इस पे मोबाइल पे कर लो, नहीं नहीं क्या ख्याल है, पेट तो भर जाएगा ना, नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। तो सूर्यवंशी की निशानी है वो बाबा के घर में जाएगा, ठीक है। तो शाम को मुरली सुनने आएगा वो बारह जन्म लेट हो जाएगा, ठीक है। 7 बजे के बाद शाम को 7 बजे आएगा तो कार सात दिन काम करके कहा पी के आया ना, टॉप प्रायोरिटी मेरी बाबा है ना, मुझे ऐसी नौकरी छोड़ देनी है, ठीक है, जो मेरे को सुबह नौकरी मेरे को करने से मना करे बाबा के पास जाने से, ठीक है। मेरे को लोग कहते 7 बजे अस्पताल जाओ ना, आपके इतने सारे अस्पताल में, 5 अस्पताल में बैठता था, मेरे 5 अस्पताल में पेशेंट दाखिल होते, कहते 7 बजे जाओ ना, 7 बजे सब लोग डॉक्टर 7 बजे जाते राउंड लेके फिर अपनी ओपीडी में जाते हैं, इधर उधर काम करते हैं। मैं कहता नहीं मुझे नहीं जाना, मैं आराम से 9 बजे जाऊंगा, है ना, 7 बजे नहीं जाऊंगा। तो मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे वो कमाई नहीं चाहिए, मुझे स्थूल कमाई नहीं चाहिए, मेरी ये कमाई मेरे साथ चलेगी, सारे काम छोड़ के भी कैसा भी करके, है ना। जिनका जिनका काम, जिनका काम है मतलब जिनकी जीवन शाम की, उनके सुबह 7 बजे ड्यूटी होती है, 6 बजे मॉर्निंग शिफ्ट होती है, 6 बजे होती है ड्यूटी शुरू हो जाए, वो क्या करें, नहा धो के सुबह सुबह उठ के और नहा धो के और वो उठ के बड़े प्यार से बैठे अपने घर में, बाबा कमरा बनाए, बाबा को वहां बैठ के मुरली जो शाम को सुन के आए ना वो मुरली पहले पढ़े, जैसे किसी को बोले नहीं तो वो पढ़ के सुनाए। आप जैसे सोचो मैं सेंटर पे बैठा हूं और बाबा की मुरली सुन रहा हूं, फिर शाम को सेंटर पे जरूर जाए, और जाते टाइम बाबा के सेंटर पे रास्ते में पड़ता नहीं पड़ता तो भी उस रास्ता चेंज करके जाओ, बाबा कमरे में जाके 5 मिनट बैठ के फिर जाओ, राइट। नहीं तो ऐसी नौकरी छोड़ दो, दूसरी नौकरी कर लो, सुना, इतनी लगन होगी ना, मतलब टॉप प्रायोरिटी मेरी बाबा है, टॉप प्रायोरिटी मेरी नौकरी नहीं है, है ना, टॉप प्रायोरिटी बाबा, ये लगन होनी चाहिए, तब ऐसे तब ना मिल जाएगा सूर्यवंशी कृष्ण के जन्म साथ में खेलने को मिल जाएगा या उसके साथ देखने को मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कोई एक, अभी कितनी मुश्किल होती है कृष्ण के एक टांग पकड़े रहते लोग, कितनी मेहनत करते हैं एक बार उसका साक्षात्कार हो जाए, वो भी नहीं होता है। तो कम से कम ये सब कुछ छोड़ना, तब तो कृष्ण के उसमें पहुंचेंगे जन्म में, नहीं क्या ख्याल है। जो 11 बजे जाते हैं मुरली सुनने वो 4 जन्म लेट, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मतलब हमारी टॉप प्रायोरिटी बाबा नहीं है, सिंपल सी बात है, हमारी टॉप प्रायोरिटी बाबा नहीं है, ठीक है। हाँ जी क्या करें, हाँ तो फिर भी गीता पाठशाला में तो मुरली सुनी 11 बजे सुनी, पर आप अपना नहा धो के तैयार होके पहले मुरली सुबह भले पिछले दिन की सुनो, है ना, आजकल तो सब कुछ मिल जाता है, प्रिंट आउट भी मिल जाता है, फिर नहा धो के उस भावना से बैठो। 11 बजे क्लास में गए तो मेरी भावना क्या है, है ना, बांधेले हो कोई बात नहीं, बांधेली माता हो कोई घर वाले मना करते तो भी वो उस लगन से फिर बैठो, गांव में है तो ना, सुबह सुबह कोई भी काम करने से पहले, खाना खाने से पहले, मुंह में कुछ डालने से पहले, पहले बाबा की मुरली अंदर जानी चाहिए, पहले आत्मा का भोजन फिर शरीर को भोजन देना। ये मैंने 86 में कसम उठाई थी, ठीक है, 1986 में जब से मेरे को ज्ञान में चला, मैं 18 साल पेट में रहा हूं, पता है आपको, 18 साल गर्भ में रहा हूं, पता है आपको, एक दिन मुरली थी ना बाबा की, अभी बाबा ने एक मुरली थी ना, बाबा कह साका विदेशियों के लिए बाबा कह रहे संडे वाली मुरली में बाबा ने कहा ना कि 18 साल मतलब तुम्हें तो बाबा ने पहले ही याद किया था ना, हमारे घर में 1968 में पाठशाला गीता पाठशाला शुरू हुई, हमारे घर में पहले वो टीचर बहन आती थी कृष्णा बहन और सरला बहन, रानीबाग वाली सरला बहन और कृष्णा बहन तिरनगर वाली केशवपुरम वाली हमारे घर में आते थे, एक मतलब 12 बजे के आसपास आते थे 12:30, तो वो मैं हमारे घर में आते थे और मैं रोज उनके लिए सब माताओं को बुला के लाता था ना, आसपास की माताओं को रोज आते थे, तो मैं जब और फिर जो मैंने 18 मतलब मैं दादियों से बचपन सब दादियों से मिले बचपन से, पांडव भवन दिल्ली में 73 का मेला 81 का मेला सभी प्रोग्राम जितने होते थे, सुबह सुबह प्रभात फेरी होती थी 5 बजे तो हम लोग झंडा लेके आगे जाते शिव बाबा याद है जागो नया सवेरा है वो सब करता था, किन्तु कभी ज्ञान योग नहीं किया है ना। हाँ मुरली खाने का शौक, मुरली का शौक नहीं था, टोली खाने का शौक था, गुरुवार का भोग खाने का शौक था, गुरुवार के दिन भोग खाने पहुंच जाते थे, संडे को टोली खाने पहुंच जाते, कोई प्रोग्राम होता उसमें पहुंच जाते थे। तो मतलब हमने 18 साल टोली खा के फिर जन्म लिया है ना, फिर मुरली सुननी शुरू की है ना इतने सालों के बाद, तो मतलब ये लगन अपने अंदर आनी चाहिए, ठीक है, समझ किस दे? अब कभी ये मत सोचो हमारा बच्चा ज्ञान नहीं सुनता, हमारा ये नहीं सुनता, हो सकता उनका मेरे जैसा पार्ट हो ना, आप टेंशन में तो नहीं आओ ना कम से कम, ठीक है? तो अटेंशन लगन लगाओ, लगाएंगे ऐसे हा? पक्का पक्का नहीं, कच्चा कच्चा ऐसे लगन लगाएंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे ना, मतलब पुरुषार्थ भी मैं बताता जाना सा ना। तो मैंने बताया ना लास्ट क्या था, वर्षा और मदद किसको मिलती है, तो वर्षा इस संगम की वर्षा पहले लेना चाहिए पवित्रता, ये हमारे अंदर एक एक ज्ञान का पॉइंट हमारे बुद्धि में आ जाए, है ना। फिर पवित्रता, शांति माना क्या, शांति माना ना पास का, हमारा बाबा कैसा है, हमारा बाबा निराकारी है और असोचता है, कुछ सोचता ही नहीं है, ना पास का सोचता है ना भविष्य की सोचता है, वर्तमान में भी जो होने वाला होता है उसको संकट ड्रामानुसार टच होता है। क्लास भी यहां कराते बाबा आते हैं तो जो ड्रामानुसार बोलना होता है वही बोलता है, अपने आप सोच के नहीं बोलता है। मुरली में था ना अभी, बाबा कोई बाबा मनन चिंतन करता है क्या, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा करता है, शिव बाबा मनन चिंतन करता है क्या, जो वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसको जो भी टच होता है वो बोल देता है। नहीं तो अभी अभी जो लास्ट की मुरली चली 2007-08-10 में चली, बाबा 1967 में बोल देता या 71 में बोल देता, नहीं बोला ना बाबा ने, तो बाबा ने जो बोला अभी बोला ना। तो ये हमको समझने की बात है, बाबा को कोई मतलब संकल्प नहीं चलता और हम क्या करते हैं, बाबा ऐसा सोचता है और हम क्या है, सोचता है। जब पवित्रता आ जाती है ना, मतलब हमारे अंदर लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म, और फिर ड्रामा में किसी के पार्ट को देखें हम क्या क्यों कैसे करें, क्या क्यों कैसे करते हैं ना, ये भी अपवित्रता है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रही है, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए, ज्ञानियों के भी ऐसे करते क्या, है ना, उसका पार्ट है ना, उसमें क्वेश्चन रेज करना भी अपवित्रता है। मतलब वैध संकल्प चला ना, तो सूर्यवंशी आत्मा की निशानी को कभी भी वैध संकल्प नहीं चलाएगी, कभी किसी बात में क्या क्यों कैसे करने वाले सूर्यवंशी नहीं बनते, वो चंद्रवंशी बनते, ठीक है, पक्का? आगे से करते हो तो ध्यान रखना, अभी बदल देना, तो बदल देंगे तो फिर सूर्यवंशी बन जाएंगे ना। तो ये जो है निशानी है उसकी, तो वो जो है ऐसे वो क्या करते हैं, जब मन में पवित्रता आ गई ना, ये आ गया, और फिर मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में ब्रह्मचारी रहते हैं। ब्रह्मचारी माना जैसे ब्रह्म तत्व में आत्माएं विचरण करती है ना आपस में, एक दूसरे को आत्मा देखती, ऐसे ही एक दूसरे को देखते, और मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में ब्रह्माचारी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया फॉलो फादर करते हैं, पक्का फॉलो फादर करते हैं, वो जो है वो पवित्रता, ये पवित्रता है। जब ऐसी पवित्रता अंदर आ गई तो शांति आती है। शांति का मतलब क्या है, ना पास का चिंतन ना भविष्य की चिंता, पास का चिंतन भी नहीं, क्योंकि पता लग गया ना कि ये आत्मा हम पवित्र बन गए ना, अभी हमारा क्या क्यों कैसे खत्म हो गया, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो गया, ब्रह्मचारी ब्रह्माचारी बन गए, तो पास का चिंतन खत्म हो गया, भविष्य की चिंता खत्म हो गई, अब वर्तमान में बाबा से कंबाइंड रहने लगते हैं। पवित्रता आ गई ना, बिना पवित्रता के हम बाबा से कंबाइंड रह नहीं सकते, किसी से लगाव झुकाव प्रभाव टकराव तो बाबा से कनेक्ट नहीं हो सकते, क्या क्यों कैसे तो बाबा से कनेक्ट नहीं हो सकते, ब्रह्मचारी ब्रह्माचारी नहीं है तो बाबा से कनेक्ट नहीं हो सकते, तो फिर बाबा से कनेक्ट हो जाते। जैसे बाबा को पास का चिंतन नहीं चलता भविष्य की चिंता, ऐसे हमको भी ऐसे फिर ऐसा हो जाता, और फिर बाप से कंबाइंड रह के सोचते हैं, कुछ भी सोचना होता है ना तो बाबा से कंबाइंड होकर, जब भी कुछ सोचना है इस बारे में सोचना है ये बात है, बाबा से कंबाइंड होकर सोचते हैं, देखना है बाबा से कंबाइंड होकर, वो मिलने आते हैं बाबा से पहले कंबाइंड हो जाते हैं, है ना, पढ़ना है कोई किताब पढ़नी है मुरली पढ़नी है बाबा से कंबाइंड होकर पढ़ते हैं, तो उससे पावर भी जाती है साथ में, सुनने बात सुनते भी और पावर भी जाती है। ये ध्यान रखना है, बाबा की जो बहने जो भी बहने हैं या भाई भी क्लास सुनाते हैं टीचर, बाबा उनके द्वारा मुरली सुना रहा होता है, भले मुरली कागज पे होती है कि तो साथ साथ पावर भी दे रहा होता है, आप अपने आप पढ़ते हो ना तो पावर नहीं आती है। मैं हमेशा क्या करता हूं, मुरली जब मैं चार्ट भरता हूं, वो चार्ट भरते हैं हम लोग ना, तो अगर मैं अपने आप खाली मुरली पढ़ता हूं, अपने आप को मेरे 15 नंबर होते हैं, मुरली के 20 नंबर होते हैं, तो मैं उसमें से 10-2 नंबर अपने आप को दूंगा अपने आप पढ़ने के, है ना, और सामने जाके कोई भी दादी या दीदी जो भी मुरली सुनाते हैं तो वहां जाकर क्लास में बैठ के सुनने के फिर 20 नंबर होते हैं, हा? पढ़ने के से 2 नंबर होते हैं, ठीक है, 20 में से 2 नंबर, और सम्मुख जाके क्लास में जाके मुरली सुनने कितने नंबर, 20 नंबर, ठीक है, अब याद रखना है, सिर्फ मुरली पढ़ने के 10 नंबर होते हैं, 10% नंबर होते हैं, ठीक है।
अभी ध्यान रखना, आप मोबाइल पे देखते हो ना, टीवी में देखते हो, दस उसके दो नंबर है, दो नंबर में 10%, और सम्मुख जाके सुनने के कितने नंबर है, 100 नंबर है। ठीक है, करेंगे। अब ये परिवर्तन की बातें हैं सारी ना, ये भट्टी का जूस जूस मिल रहा है ना आपको, भट्टी का ना, है ना, एक्शन प्लान ना, भविष्य का एक्शन प्लान है ना ये। ठीक है, तो ये हमको करना पड़ेगा। तो पवित्रता, अब शांति आ गई, शांति आ गई नहीं आ गई, अब मैं जो कर रहा हूं बाबा से कंबाइंड वो कर रहा हूं, सोच रहा हूं, देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, कोई कहता मुझे कुछ सुनाना है बाबा से, अच्छा पहले बाबा से कंबाइंड हो जाओ, फिर पहले बाबा को बोलो एक मिनट साइलेंस में बैठ जाओ, नॉन बीके है तो, नहीं तो बीके है तो बोलो मेडिटेशन कर लेते एक मिनट, और फिर शुरू करो, फिर उसकी बात सुनना शुरू करो, है ना। मैं तो घर में ये भी कहता हूं, इसमें भी बोलता हूं ना, पति पत्नी को कभी लड़ना भी ना आपस में, तो क्या करो, एक मिनट पहले बाबा की याद में बैठ जाओ, ठीक है ना, और फिर लड़ाई करो, ठीक है, शांति से लड़ाई करो ना, फिर एक मिनट लड़ाई होने के बाद फिर एक मिनट बाबा की याद में बैठ जाओ, ठीक है, नहीं ऐसा करके देखना ऐसे ना कभी, तो लड़ाई करनी जरूरी है क्या, सूर्यवंशी कभी लड़ाई करते ही नहीं ना, क्योंकि ड्रामा के तादी मध्यंत को जानते हैं ना, इसे लड़ाई करते ही नहीं ना। ठीक है, मैं कभी आप भाई सुनना हो, खाना हो, बोलना हो, कुछ भी करना हो, पैदल करना हो, है ना, अगर ऑफिस में काम करना हो, कपड़े धोने हो, बर्तन मांजने हो, कुछ भी करने हो, खाना बनाना हो, बाबा से कंबाइंड हो करो, तो शांति रहेगी। जब ऐसी शांति आ जाएगी ना, फिर क्या होगा, फिर आप सबको स्वीकार करना सीख जाओगे बिना शर्त के, फिर बिना शर्त के स्वीकार करना सीख जाओगे बिना शर्त को, कि कैसा भी है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, आज की मुरली में था, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, तो हर एक का, तो बाबा क्या करता है, बिना शर्त के दिल से आदर सबको सबको स्वीकार करता है। जैसे एक फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है ना, वो क्या करता है, सामने हीरो हीरोइन भी बैठे हैं, विलन भी बैठा है, विलन समझते हैं ना, विलन भी बैठा हुआ है, तो वो ऐसे करता है, चाय मंगानी है तो कहेगा नहीं, हीरो हीरोइन के दो कप ले आओ भैया, एक मेरे ले आओ, विलन को मत देना, ऐसे करता है क्या, तीनों तीनों सबको पैसे देता है ना, हीरो हीरोइन को भी देता है, विलन को भी देता है ना। तो ये जो जितने भी लोग हैं अभी, हम मान लो बाबा के बच्चे, बी के बच्चे हैं, है ना, कुछ कुछ आतंकवादी भी हैं, डाकू चोर भी हैं, जेब कतरे भी हैं, बेईमान भी हैं, तो बाबा क्या करता है, ये सब एक्टर है ना, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं ना, तो सबको बाबा पालना देता है बिना शर्त के, एक समान पालना देता है। नहीं, हम क्या करते हैं, वो है बाबा का रूहानी प्यार, आत्मा हर हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, सबको इक्वल कर रहा है, और हम क्या करते हैं, जजमेंटल, ये बीके, ये नॉन बीके है ना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये सुधरने वाला नहीं, जजमेंटल। रूहानी प्यार का मतलब है बिना शर्त के आदर के साथ हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ, हर पार्ट के साथ दिल से स्वीकार करो, और फिर क्या करो, फिर सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों से संपन्न होकर इससे व्यवहार करो। एक गुलाब का फूल दिया मैंने आपको, एक एक पुण्य आत्मा को दिया है ना, वो तो खुशबू आई, एक पाप आत्मा को दिया उसको क्या है, बदबू आई है। और हमारा क्या होना चाहिए, हम क्या करते हैं, जो बहुत अच्छा है ना उससे तो बहुत प्यार से बात करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये ठीक से नहीं करता, हाँ भाई क्या काम है, कल आना है ना, आज टाइम नहीं है, उसको चाय भी पिलाई, इसको पूछा भी नहीं, ये रूहानी प्यार नहीं। कोई कैसा भी है, बाबा के हर बच्चा बराबर है, बाबा उसका रोल है, बाबा को आतंकवादी ना हो तो विनाश कैसे होगा, मुझे बताओ, होगा होगा, मुझे बताओ, होगा, जरूरी है ना, उसका पार्ट है ना, वो तो विलेन है, उसके बगैर फिल्म चलेगी नहीं, बाबा की चलती है क्या। तो हम ये पंजाब की बहनों का बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जब आतंकवादी आते थे ना सेंटरों पे, तो बहनों को ज्यादा पता होगा, हरियाणा के पास वालों की, हरियाणा की बहनों को, तो ना हमने कई बहनों ने अनुभव सुनाया हमको ना, कैसे कैसे कई बार आतंकवादी सेंटर में घुसे हैं, क्योंकि तो बहनें घबराई नहीं, उनको भी बड़े प्यार से, हाँ भाई सब बैठो, है ना, और बैठ के उनको बड़े प्यार से देखा, उनको कुछ चाय वाय पिलाई, खाना खिलाया, और वो भाई चुपचाप चले गए, आए थे उजाड़ने, तो बड़े प्यार से चले गए वापस। तो वो रूहानी प्यार की फीलिंग, तो ये रूहानी प्यार हमारा होना चाहिए। जब हम सारे विश्व में हर आत्मा को स्वीकार कर लेंगे ना, तब हमारी मन बुद्धि इस दुनिया से डिटैच हो जाएगी। डिटैच होने के बाद फिर हम अतिंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे, फिर हम बाबा की गोद में जा सकते हैं। ऐसे बच्चे को बाबा अपनी गोद में ले नहीं सकता है। जो बच्चा पक्षपात करता है ना, इधर इधर किसी को कैसे देखेगा ना, पक्षपात करने वाले को बाबा, वो बाबा की गोद में नहीं जा सकता। तो जो जितना हम इसका करते हैं ना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन स्मरण करते हैं, ये देही मानी स्थिति है, ये देही मानी स्थिति है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन स्मरण करना, ये देही मानी स्थिति है। और जैसे पवित्रता अंदर आने लगी ना, अब आत्मिक आत्म मानी स्थिति आने लगी। शांति विचार पास्ट के भविष्य के आने बंद हो गए, व्यर्थ विचार आने बंद हो गए, नेगेटिव तो बिल्कुल ही बंद हो गए। अब जो है ये बाबा के देव विचार आने लगे, बाबा से कंबाइंड रहने लगा ना हमेशा, अब ये विचार बाबा के आने लगे। तो ये शांति आ गई, शांति माना, ये स्थिति जो आ गई ना, ये मेरी स्थिति कैसी आ गई, ये मेरी आत्म मानी स्थिति आ गई। अब मेरी सोल कॉन्शियस स्थिति आ रही है, आ गई है ना। और जब सबसे प्यार हो गया, ये और सोल कॉन्शियस गहरी स्थिति आ गई, और गहरी सोल कॉन्शियस मतलब और ज्यादा आत्म मानी स्थिति आ गई। अब आत्मा झलक रही है मेरे कर्मों से, है ना। देही मानी स्थिति में आत्मा झलकती नहीं है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं किंतु बाहर झलकती नहीं है, लगता नहीं कि आत्मा हूं, है ना। पवित्रता आने से, शांति आने से, प्यार आने से, अब ध्यान आया, अब लग रहा है कि हाँ आत्मिक आत्म मानी स्थिति आ गई, ठीक है। और जब रूहानी प्यार आ गया तो सबको सबसे बुद्धि हट गई, तो अब मैं बाबा की गोद में पहुंच गया। सूक्ष्म वतन माना, अब मेरी बुद्धि और मन पवित्र हो गया। जब मेरे सबसे पवित्रता आ गई ना, और शांति और प्रेम आ गया, तो मेरी बुद्धि भी पवित्र और मन भी पवित्र हो गया। मतलब मेरा सूक्ष्म शरीर क्या हो गया, चमकदार हो गया। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, मन है ना। मन जो है मेरा सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। अगर मन मेरा पॉजिटिव है, बाबा के संकल्प भरे हुए हैं, बाबा की डायरेक्शंस भरी हुई हैं, स्मृति वृत्ति भावना संकल्प में, तो मेरी ड्रेस चमकीली होगी। और मेरे मन में नेगेटिव विचार भरे हैं, विकारों के विचार भरे हैं, तो मेरी ड्रेस दाग वाली ड्रेस है, ठीक है, गंदी ड्रेस है। बुद्धि तो यहां है, बुद्धि में बाबा है, पर बुद्धि में मन पॉजिटिव कब होगा, बुद्धि में बाबा होगा, तो हर संबंध से बाबा की याद होगी, तो फिर मेरी ड्रेस, मन रूपी ड्रेस कैसी होगी, चमकीली होगी, फरिश्ता ड्रेस होगी। तो जब ये ड्रेस धारण करके मैं सूक्ष्म वेतन माना, ये ड्रेस मेरी ऐसी होगी, अब मैं सूक्ष्म वेतन में जा सकता। सूक्ष्म वेतन माना क्या? सूक्ष्म वेतन माना बाबा का दिल तख्त। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपनी ड्रेस को क्या बनाया, बुद्धि में बाबा शिव बाबा, और मन में क्या, मन को परिवर्तन कर लिया, मनमना भाव कर लिया, पूरा पावन सत्व प्रधान बना लिया, संस्कार पावन सत्व प्रधान बना लिया। तो ऐसा बाबा जब ऐसा बन गया तो क्या हो गया, तो जब ऐसा हो गया तो क्या हुआ, मैं 7 बजे तक क्लास पूरी कर फिर योग कराएंगे आधा घंटे, ठीक है। आप उसी पे योग करना आज, है ना, इन्हीं बात पे योग करना, सूर्यवंशी के संस्कार के ऊपर कैसे बनाना उसको प्रयोग करना, है ना, ठीक है। तो जब ऐसा यथार्थ, बाबा ने कहा मेरे को ऐसा भी सारा ध्यान था कि अर्थ सहित बात को याद करना, ये अर्थ सहित कैसे याद करना वो मैं आपसे डिस्कस करूं। तो वो जो है, जब हमारी ऐसी स्थिति बन गई ना, तो तब हमारा मन बुद्धि क्या हो गया, बाबा कैसे, बाबा ने क्या किया, बाबा का दिल में जाके बैठ, दिल तख्त पे जाके बैठ गया ब्रह्मा बाबा। क्योंकि ब्रह्मा का दिल क्या है, ब्रह्मा कौन है, अभी अव्यक्त ब्रह्मा कौन है, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बुद्धि, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान मन, और संपूर्ण पावन सत्व प्रधान संस्कार, ये है ब्रह्मा इस समय, संपूर्ण ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा। उसकी दिल कैसे सच्ची और साफ, तो उसके दिल में आके कौन बैठ गया, शिव बाबा आके बैठ गया। शिव बाबा कौन है, शिव बाबा कौन है, ज्ञान का सागर, मतलब सत्य की समझ का सागर, ज्ञान ना सत्य की समझ, सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, पवित्रता, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, रूहानी प्रेम का सागर, अतिंद्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तियों का सागर, और सातों एनर्जी का भी बैलेंस है, उसका भी सागर है, और हीलिंग एनर्जी का भी सागर है शिव बाबा। अब देखो आप ये क्या बन गया, अभी ब्रह्मा बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है? संपूर्ण पावन सत्प्रधान बुद्धि, संपूर्ण पावन सत्प्रधान मन और संपूर्ण पावन सत्प्रधान संस्कार, उसमें कौन आ गया? अब ये ब्रह्मा बाबा बैठा ऐसे, ठीक है, उसमें कौन आ गया? शिव बाबा कौन? सागर, उसमें सागर आ गया। अभी क्या बन गया? बाप दादा बन गया, नहीं बन गया? अब इसकी गोद में जाना है, ये है सूक्ष्म वतन, ठीक है। कौन जाएगा? जिसकी बुद्धि में बाबा होगा, जिसकी दिल में बाबा होगा, बाप से एक एक संबंध का अनुभव होगा, मां का, टीचर का, बां का, बाप का, टीचर का, सतगुरु का, बंधु का, सखा का, साजन का, सर्जन का, बच्चे का, हर संबंध की अनुभूति होगी, अनुभवी मूर्त होगा। ये सूर्यवंशी की निशानी है, ठीक है। एक एक संबंध का इतना गहरा अनुभव होगा, बाप से बहुत गहरा अनुभव होगा। जो कार्य कर रहे हैं, रोटी बना रहे, रोटी बनाते हैं साथ में अनुभव, ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइवर बाबा मेरे साथ ड्राइवर बैठा बन के बैठा है ना, धोबी कपड़े धो रहे, बाबा मेरे साथ धोबी बन के, धोबी साथ में काम कर रहे। हर संबंध का अनुभव होना चाहिए, हर कर्म में बाबा साथ हो, जैसा संबंध हो उस संबंध में साथ हो, वैसे साथ हो। सर्जन और सर्जन का संबंध, बाबा डॉक्टर हो, डॉक्टर साथ में, बाबा मेरे साथ डॉक्टर है ना, बाबा यहां बैठा है और मेरे से लिखवा रहा, दवाई लिखवा रहा है। हर संबंध में, हर चीज में बाबा का साथ हो, तो ये जब अनुभव होगा तो क्या होगा? फिर क्या होगा? तो मतलब ऐसा जब होगा ना, तो हमें ये बाबा बन गया हमारा, ये सूक्ष्म वतन बन गया। इमेजिन नहीं करना है, विजुलाइज नहीं करना है, अनुभव करना है। वो सूक्ष्म वतन मुझे, ये है सूक्ष्म ना पवित्र, सूक्ष्म ना पावन, है ना। जैसे होता है मां का दिल में क्या होता है, मां के दिल में क्या होता है, एक मां के दिल में क्या होता है, बच्चा, तो बच्चा होता है ना, बच्चा 30 साल का हो गया, उसकी मां के दिल में क्या होता? जब 30 साल के बच्चे को भी देखती है, दाढ़ी मूंछ वाले को देखती है, तो उसको क्या दिखाई देता है? काम भी नहीं करता वो, जब छोटा सा था ना, 6 महीने का था, 1 साल का था, पैरों में पजेब पहनी, पजेब पैरों में होती थी, लड़कों को भी बच्चे मां बाप पजेब पहना देते हैं ना, छोटे 1 साल का जब छमछम करके चलता है बड़ा अच्छा लगता है, तिलक लगा देते हैं यहां, तिलक कान पे काला तिलक पीछे लगा देते हैं ना, कोई छोटा मुकुट लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, कृष्ण जैसे लगता है ना। तो मां को कैसे नजर आता है बच्चा देख के? वो बच्चा भले कहना नहीं मानता है, उल्टा सीधा करता है, तो भी मां को देख के वही समझ में आता है, ये मेरा वो वाला बच्चा है। अब ऐसे बाप को भी हमें देखता है तो क्या, उसको क्या दिखाई देता है? बाप को क्या दिखाई देता है? बाप के दिल में क्या है? जैसे मां के दिल में क्या है? वो छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, कृष्ण जैसा बच्चा है ना। ऐसे बाप जब हमें देखता है तो हम उसको क्या नजर आता है? चमकता हुआ सितारा, परमधाम वाला ना, और सत्यु में आया देवी देवता रूप, कृष्ण जैसा रूप ना, ऐसा मुकुट लगा हुआ, लाइट का ताज, ऐसे सुंदर सा, बहुत सुंदर सा ना। जब देखता है हमको वही नजर आता है ना, तो बाबा क्या कहता है? बाबा के पास जाते हैं, बाबा कहता है बच्चे तू ये करता है, अभी भी ये करता है, तू तो देख ये बनने वाला ना। बाबा हमारे देवता रूप दिखाता है। सूक्ष्म वतन क्या है? देवताओं और फरिश्तों की महफिल लगती है, तो बाबा दिखाता नहीं, बच्चे तुम तो ये बनने वाला है, तू क्या करता है, देख तू तो ये है ना, रियलाइज कराता है हमको, बच्चे तुम तो ये बनना है, तो ये तो तेरा संपन्न रूप है, फरिश्ता रूप तो ये वाला है, तेरा संपूर्ण ब्रह्मा रूप तो, ब्राह्मण रूप तो ये वाला है, तू अभी क्या है, तू डिफरेंस कितना देख तेरे अंदर उसके अंदर ना, ये तेरा संपूर्ण ब्राह्मण रूप है, ये संपूर्ण फरिश्ता रूप है, संपूर्ण देवता रूप है। तो बाबा देख, जैसे मां दिखाती ना बच्चे को, बेटा देख तू कितना प्यारा था, देख फोटो दिखाती है, तू कितना प्यारा था, देख तू तो मेरा चांद है ना, तू तो मेरा सूरज है ना, गोदी में लेके 30 साल का तो उसको भी गोदी में लेके कहेगी, तू तो मेरी आंखों का तारा है ना, मैं तेरे को तो दिखती हूं, तू ही तो मेरी आंखों का नूर है ना। बाबा क्या करता है? बाबा मां है ना, ब्रह्मा क्या मां नहीं है, शिव बाबा बाप है तो ब्रह्मा मां नहीं है, तो सूक्ष्म वतन में क्या करते हैं बाबा हमसे? यही तो करते हैं, आओ बच्चे आ जाओ आ जाओ, तो प्यार करता है, देखता है, समझाता है, बच्चे तुम्हें तो ये बनना है, बच्चे तुम्हें तो ये बनना है, बच्चे तुम्हें तो ये बनना है। हम थोड़ा एफर्ट करके अपने मन बुद्धि को पवित्र बनाते हैं तो बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं, बाप दादा की गोद में पहुंचते, वो सागर है ना, अनुभव कराता है। बाबा के दिल में तो हमारा अनादि और आदि स्वरूप है ना, तो अनादि आदि स्वरूप देख के हमें दिखाता है, मुझे तो ऐसे दिखाता है रोज, आपको दिखाता नहीं दिखाता है मुझे पता नहीं, दिखाता होगा जरूर आपको भी, कभी मैं गलती कर देता हूं, बाबा को कहता हूं बाबा बच्चे कब तक गलती करोगे, कब तक करोगे, है ना, तुम्हें जो मैंने ये तुम्हारा रूप तो ये वाला बनने वाला ना, ये बनना नहीं, बनना नहीं, हाँ बाबा बनूंगा, बाबा बनूंगा, बनूंगा,
ऐसे बाबा प्यार से बात करते। तो जब हम ऐसा अपनी पवित्र बुद्धि पवित्र पवित्र मन कैसे बनेगा, ये मुरली से पवित्र मन बनेगा। जितना मुरली को घिसोगे, लक्ष्य सोप है ना, ये मुरली लक्ष्य सोप है ना, जितना घिसोगे आत्मा बाबा धोबी है ना, बाबा कहते धोबी कपड़े साफ करता है ना, कौन से कपड़े साफ करता है, कौन से वाले मैले, कौन से कपड़े आत्मा के कपड़े कौन से, ये मन बुद्धि संस्कार मैले कपड़े है ना, इसको घिसता रहता है ना। घिसता घिसना किसता कौन है, घिसना हमको कि बाबा को घिसना, घिसना हमको है। साबुन बाबा ने दे दिया, नहीं लक्ष्य दे दिया, लक्ष्य माना तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, कृष्ण जैसा देवता बनना है, राधा जैसा बनना है, तो क्या करते हम घिसते, मन में घिसते रहते हैं, मन में घिसते रहते हैं ना। साबुन कौन सा, मुरली घिसते रहते हैं ना, मनन रिवाइज करते हैं, चिंतन माना गहराई में जाते हैं, मंथन माना मगन हो जाते हैं, बाबा से पूछते बाबा क्या करूं, मेरे से तो होता नहीं, बच्चे कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लो ना बच्चे, ये मतलब मेरे मेरा इस मुरली का कहने का मतलब तुम्हारा ये था, तुम्हारे बाबा मैं तो डॉक्टर हूं, मेरे को धंधा डॉक्टरी का करना है, पेशेंट देखने, तो मैं कैसे करूं, बच्चे तुम ऐसे किया करो, किसी पेशेंट को देखने से पहले उसको ऐसे दिया कर देखा करो, है ना, ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, बाबा मैं तो खाना बनाती हूं, बच्चे तुम ऐसे किया करो, खाना बनाते समय ऐसे से किया करो, ऐसे से किया करो, है ना। तो बाबा बात करता है, नहीं करता है। तो सूर्यवंशी आत्मा की निशानी क्या है, सारा दिन बाबा से बातचीत करती रहती है ना, वो रहती यहां पर है कि तो सूर्यवंशी स्थिति, सूर्यवंशी आत्मा की निशानी है, या तो बीज रूप स्थिति का अनुभव करती है या फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव करती है। चंद्रवंशी क्या करता है, कभी कभी फरिश्ता स्थिति का अनुभव होता है, अधिकतर लड़ाई करने में लगा रहता है ना, समस्याएं आती रहती है उसको लड़ाई करने में, सारा टाइम लड़ाई करने में टाइम जाता है। अभी देखो लड़ाई करने में टाइम जाता है या नहीं जाता है, लड़ाई नहीं करनी, क्या करना है, राजा बच्चे हैं ना हम, तो बाबा की गोद में बैठना है ना, ठीक है, बस बुद्धि मन, बुद्धि में बाबा और मन में मुरली है ना, बुद्धि में बाबा मन में मुरली है ना, जो बाबा मुरली में स्मृति दे रहा है उस स्मृति को धारण करना, वृत्ति जो बाबा बता रहा बच्चे आत्मिक रूहानी वृत्ति में रहा, वो वृत्ति बनानी, और भावना सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना, और संकल्प जो बाबा मुरली में दे रहा है वो बार बार रिवाइज करने, चिंतन करना, चिंतन माना मुझे करना ही बाबा, मुझे तो बनना ही, मंथन माना मक्खन निकालो, सिमरन माना फिर वो मक्खन निकालो, सारा दिन कार्य में लगाओ। तो ये हो गया अत्यंत, जब हम बाबा जैसे ऐसे बन जाते तो अत्यंत सुख बाबा की गोद में पहुंच जाते, अब लगता मिल पाना था सब पा लिया, जब बाबा गोद में पहुंचते ना तो क्या लगता है, पाना था सब, सर्व प्राप्ति लगता, बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, बस फिर क्या होता, संतुष्ट हो गए बस, और कुछ नहीं चाहिए, इच्छाएं खत्म, इच्छा मात्र में विद्या, ये स्थिति अत्यंत सुख की स्थिति है, बाबा की गोद की स्थिति, बाबा की गोद में बैठा हूं और बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बस ये स्थिति अत्यंत सुख की स्थिति है। ये अशरीर स्थिति है, पहले क्या थी, शांति पवित्रता शांति प्रेम, ये तीन स्थिति आत्म मनस्थिति की अनुभूति है, जब आत्मिक आत्म अभिमानी बनके तो अत्यंत सुख की अनुभूति होती है, अच्छा अशरीर स्थिति का अनुभव होता है, बाबा की गोद का अनुभव होता है। तो ये स्थिति अशरीर मना, देह का जरा भी भान नहीं है, बस मैं बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा और मैं, तीसरा ना कोई, देह भी नहीं, देह की दुनिया भी नहीं, देह के संबंध भी नहीं, देह के पदार्थ भी नहीं, देह के स्वभाव संस्कार भी नहीं, देह पता ही मैं हूं ही नहीं कि देह मैं हूं, है ना। फिर आनंद माना बाबा की गोद में लवलीन हो गए, याद में लवलीन हो गए, बाबा की बाबा में लवलीन हो गए, अब कोई संकल्प भी जैसे चलने बंद हो गए, है ना। तो ये आनंद की स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में रहकर जब बाप को याद करते ना, शरीर बाप को परमधाम में, जब अतिंद्र सुख आनंद की अनुभूति लवलीन स्थिति में बाप को अशरीर परम धाम में पहुंच गया, तब ऐसी स्थिति में याद करते हैं तो शक्ति आनी शुरू होती है। जब अतिंद्र सुख आनंद का अनुभव हो गया, सत्य को प्रकट शक्ति आ गई, अब मुझे तो यही करना है, दुनिया जाए कहीं भी कुछ भी करे मुझे तो यही करना है, मुझे तो अमृत वेला उठना ही है, चाहे 12 बजे नींद आए 12 बजे सो कोई बात नहीं, 3:30 उठना ही है मुझे तो। ये स्थिति अतिंद्र सुख ये है, तब सत्य को प्रकटनी शक्ति आ गई, अब विवेक, सत्य प्रकटनी शक्ति माने विवेक, प्रकटनी शक्ति नहीं, सत्य को प्रकटनी शक्ति आ गई, अब यथार्थ निर्णय करने शक्ति आ गई, मतलब यथार्थ माने दिव्य बुद्धि आ गई, अभी दिव्य निर्णय शक्ति आ गई, सत्यता पे आधारित, निर्भयता पे आधारित, है ना, अंतर्मुक्ता एकांतवासी ऐसी स्थिति, बेहद की वैराग्य वृत्ति पे आधारित बुद्धि आ गई, अब मेरी बुद्धि एकदम कहती है, अब क्या होता, अब मेरी बुद्धि, अब बड़ी से बड़ी बात छोटी होगी, पहाड़ जैसी बात भी राई बन गई, कुछ भी हो गया राई बना दिया, सूली को कांटा बना दिया समाज, और उसके बाद
मन बुद्धि को समेट के बिंदु बन के वृंदावन में बिंदु बाप को याद करना शुरू, समेटने की शक्ति। तो चार शक्ति होगी ना, ऐसे किससे पैदा हुई, आनंद से पैदा हुई। शक्तियां किससे पैदा होती हैं, अतिंद्र सुख आनंद की अनुभूति से। जैसे मैं अश्री अश्री बन के अश्री बाप को याद कर रहा हूं परमधाम में, तो मेरी क्या होती है, मेरे अंदर ही शक्ति आनी शुरू हो गई। कौन सी, सत्य की परखने की शक्ति आ गई, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ गई, अब बड़ी बात छोटा होने लग गई और समेट के मन बुद्धि समेट के बाबा में टिकने लगी। जब टिकने लग गई तो अब सत्य को अब सहन करने की शक्ति आ गई, करंट आना शुरू हो गया ना, करंट आना शुरू हो गया। अब करंट आना शुरू हुआ तो क्या हुआ, अब लोग मुझे गाली देते हैं, इंसल्ट करते हैं, कुछ जिसको बोलना है। जो सत्य होते हैं उनको बहुत सहन करना पड़ता है, झूठे को कुछ नहीं सहन करना पड़ता। टूटे मटके को, क्रैक मटके को बजा के देखता नहीं है, देखता है क्या, साबुत मटका दिखाई देता है तो क्या करते हैं सब लोग, बजा बजा के देखते हैं ना, आगे पीछे, फिर खुद बजा के देख लेते, फिर दूसरे को पकड़ा देते, तू भी बजा के देख ले भाई, फिर पानी भी डाल के कान में भी सुनकर आवाज सुन के देखेंगे ना, मतलब निशानी है ना, क्या समझे, तो बजा के सब देखेंगे ना। तो सत्य करंट नहीं आ रहा तो बजा के देखे दर्द होता है, करंट आता है तो फिर बजाने का अच्छा लगता है, अच्छी आवाज भी अच्छी लगती है ना, ठीक है। तो जिसको टेस्ट आते ना वो बस सत्य है, ठीक है। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था 2007 में 8 में, सहनशीलता का देव और सहनशीलता की देवी बनो, वही सहनशाह बनेंगे। तो ये ध्यान रखने का, झूठे लोग ग्रुप बना लेते हैं और सच्चे लोग कभी ग्रुप नहीं बना पाते, सच्चे लोगों का ग्रुप नहीं बनता, बनता है क्या वो, उसका सत्य क्या होता है, बाबा एक मैं और एक मेरा बाबा, सारी दुनिया एक तरफ, मैं और बाबा एक तरफ, सुना, ऐसी स्थिति। और डर नहीं लगता, फिर डरता नहीं है, डर नहीं लगता है, सारी दुनिया कुछ मर्जी करती रहे कोई बात नहीं, मैं बाबा, बाबा मेरे साथ है ना, मैं अर्जुन है ना, कृष्ण मेरे साथ, बाबा मेरे साथ। तो जब ऐसी स्थिति सहन शक्ति आ गई, सामान्य शक्ति आ गई, फिर सामान्य शक्ति भी आ गई, नहीं तो दुनिया में इतना सहन करते ना, 10 लोगों को बताते हैं, पता मैंने ये किया, पता मैंने कितना सहन किया, पता मैंने कितना सहन किया, वो सहन, तो इस तरह से करते, और सामान्य शक्ति आ गई, फिर सामना करने, फिर आ जाओ और किसको आना, आ जाओ सामना करने शक्ति, फिर सहयोग करने शक्ति, इस तरह से हमारी सातों शक्तियां आ गई, ये विक्रम विनाश होना शुरू, और फिर सातों एनर्जी का बैलेंस हो गया। ये नहीं, ज्ञान बहुत सारा है, पवित्रता है नहीं, किसी से लगाव है, शांति आ गई, प्रेम आ गया, मतलब सातों का बैलेंस हो गया, फिर हीलिंग एनर्जी बनी, हीलिंग माना अब हीलिंग हो गई, अब हीलिंग होनी शुरू हो गई, अब हम ऐसा योग करेंगे, ठीक है, करेंगे। तो पहले ज्ञान का अंदर मनन चिंतन करते हुए, आज की जैसे मुरली है ना, तो ये भी इसी दिन तुम आत्मा बाबा एक संबंध की अनुभूति करो, और ड्रामा ड्रामा साक्षी, जो भी आपके घर में हो रहा है, परिवार में, सेंटर में हो रहा है, साक्षी हो जाओ, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले करती, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला सबसे अच्छा। फिर पवित्रता, पवित्रता माना सत्य स्वरूप में टिक जाओ, अपने अनादि आदि स्वरूप में सबके सत्य स्वरूप को देखो, है ना, और फिर सत्य स्वरूप में व्यवहार करो। फिर शांति, ना पास का चिंतन, ना भविष्य की चिंता, वर्तमान में बाबा के साथ कंबाइंड होके सोचना, देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, सोना, सब कुछ है ना। फिर प्रेम, सबको स्वीकार कर लो जो जैसा भी है, और फिर शांति प्यार खुशी से उसकी पालना करना। फिर उसके बाद रूहानी प्यार, मतलब रूहानी प्यार, फिर रूहानी प्यार हो गया, फिर बाबा की गोद में पहुंच गया, बुद्धि मन पवित्र हो गया, बुद्धि में बाबा आ गया, मन में बाबा की पूर्ण मुरली आ गई, बाबा की चित शिक्षाएं आ गई, और फिर बाबा की गोद में पहुंच गए। बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा क्या है, शिव बाबा कौन है, कंबाइंड है दोनों, क्या इमेजिन नहीं करना, विजुलाइज नहीं करना, रियल में जब अंदर जाओगे ना तो बाबा की गोद का अनुभव होगा, फिर बाबा से अनुभव करो, ठीक है, फिर आनंद बाबा की याद मिला, फिर आठो शक्तियां आ जाएंगी, ठीक है, आठो शक्तियां ऐसे करें, ठीक है, करेंगे सभी। फिर हीलिंग एनर्जी, फिर विक्रम विनाश, यही विक्रम विनाश है, ऐसा नहीं कि ऊपर आग में जाते हैं तो वहां पर जाके पाप जल जाते हैं, ऐसा नहीं है, सहन करने से, बिना क्वेश्चन के सहन करना, संभाल लेना, सामना करना, सहयोग करना, जो तुम्हारे गलत करते हैं उनको भी हेल्प करना, उन पे दया करना, उनकी मदद करना सच्ची दिल से, ये है विक्रम विनाश। इतनी शक्ति आ जाती है, फिर आपको कोई बात भी, किसी की कुछ भी चीज नुकसान नहीं करती, और आपका आभा मंडल बड़ा होता जाता है, उनकी बातों का आपके ऊपर असर नहीं होता, ठीक है, कवच जैसे बन जाता है, फिर ठीक होता है, फिर ये कवच हमें सब चीजों से हमें रक्षा करता है। तो ये सूर्यवंशी की निशानी करें, सीधे होके बैठ जाओ। अपना बैग नीचे रख दो, बैग डायरी वगैरह सब नीचे रख दो ना, एकदम फ्री होके बैठ जाओ और मुट्ठी मुट्ठी ऐसे आराम से ऐसे बैठो, कोई ऐसे मत लगा के बैठो, ठीक है? ये बाबा की श्रीमत नहीं है, कोई लंबा सांस छोटा सांस मोटा सांस लेने की बात नहीं है, आराम से रिलैक्स होके बैठो, जैसे हाथ ऐसे रखो ऐसे रखो, जैसे मर्जी रखो, ठीक है? महसूस करो अपने, व्हाइट लाइट रखो, व्हाइट लाइट रखो। अर्थ सहित बाबा को याद करेंगे ना, अभी ये है अर्थ सहित, ये है ना, अर्थ सहित एक ही चीज को करो। ये तीन बातें ध्यान रखनी है, तो पढ़ाई पे टेंशन करंट खींचने के लिए, पढ़ाई पे टेंशन, धैर्यता, बहुत स्लो होना चाहिए, स्लो माना एक ही चीज को अनुभव, यानी भाग भाग के नहीं, अभी ज्ञान फिर पवित्रता फिर शनि, उसमें टिको, एक एक संबंध में टिको, माँ के संबंध में टिको, बाप के संबंध में टिको, टीचर के संबंध में टिको, बंधु, बाप के संबंध में बाबा त्रिनेत्री तीसरा देता है, टीचर के संबंध में बाबा त्रिकालदर्शी बना देता है, स्वदर्शन चक्रधारी बना देता है, और सतगुरु के संबंध से बाबा हमको त्रिलोकीनाथ बना देता है, गति सदगति ना, हमको तीनों लोक में जाने की छुट्टी मिल गई, अभी सूक्ष्म वतन परम धाम, कहीं सुखधाम, कहीं भी जाओ, ऐसे बंधु के रूप में सारा बोझ ले लिया, सखा के रूप में सारी बातें बाबा को बता दो, बाबा मुझसे आज तक एक गलती हो गई है ना, आगे से नहीं करूंगा, आगे से नहीं करूंगी, और फिर साजन के रूप में दैवी गुणों से सजा देता है, सजन के रूप में ऑपरेशन करके जो जो गंदगी है ना अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके बाल बच्चे जो भी, उनको निकाल देता है, ठीक है? और बच्चे के रूप में अमृत अनुमंधन उस पर बलिहार कर दो, माँ के रूप में दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे देता है कि बच्चे आओ मेरी गोद में बैठ जाओ, तो ऐसा अनुभव करो, एक ही संबंध में टिको है ना, धैर्यता और गंभीरता, सीरियस होकर करो, आज की मुरली में कल की मुरली में गंभीरता, गंभीरता का गुण बहुत, गंभीरता में सीरियस होके करना है मुझे, डीले होके नहीं, आंख बंद ऐसे कर ली, ऐसे कर ली, गर्दन टेढ़ी कर ली, सीधे होके अलर्ट होके बैठो और आराम से बैठो और गंभीर सीरियस होके मुझे समझो कि मुझे करना है, और पेशेंस रखो, आराम से किसी चीज को अनुभव करो, प्यार से, मैं आत्मा हूं है ना, हम सब आत्माएं बैठी हैं, हम एक पिता की संतान है, पिता से मेरे को वर्षा मिलता है, संबंध का अनुभव करो, ड्रामा मेरे घर में मेरे आसपास जो कुछ हो रहा है अभी तक, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, देखो और जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला है, फिर पवित्रता को देखो, फिर शांति को देखो, फिर प्रेम को अनुभव करो, फिर खुशी को, अतिंद्र सुख, बाबा की गोद में पहुंच जाओ, फिर आनंद को अनुभव करो, फिर शक्तियों का अनुभव करो, ठीक है? राइट, रास्ता मत भटकना ना, चलो।